अभी अभी हमारा अगला सेशन शुरू होने जा रहा है, समापन सत्र, जिनका आप सभी ना चाहते हुए भी सत्र तो चलना ही है, क्योंकि जीवन की पहिया तो पट्टी पर चलता ही रहता है। तो दो दिन का इस सुंदर समागम का आज हम समापन सत्र पर पहुंचे हैं। राजनीतिज्ञों के इस पावन सम्मेलन के समापन सत्र में आप सभी माननीय महानुभाव राष्ट्र के कर्णधारों का हार्दिक स्वागत करती हूं और अभिनंदन है। आज के इस सत्र का बेहद सुंदर और गहरा विषय है, राजनीति का नैतिक आधार, सत्ता और पद से ऊपर सेवा। हम सब जानते हैं कि राजनीति का दूसरा शब्द ही है जनसेवा। जनसेवा से ही आप लोगों का पहचान है। मेरे को एक कहानी याद आ रही है, क्योंकि एक राजनीतिता, एक राजा, वो अपना विरासत कायम रखना चाहता था और इसके लिए उसने हर चौक पर विशाल संगमरमर की मूर्तियों का प्रतिष्ठापन करना चाहता था और विशेष मूर्तिकारों को, शिल्पियों को बुलाकर वो मूर्तियों का, उस स्कल्पचरिंग का काम शुरू किया। करोड़ों का रुपए उन्होंने खर्च किया, बहुत सारे मूर्तियां बनाए और हर जगह उसका प्रतिष्ठापन करता गया। लेकिन जैसे वो मूर्तियों के ऊपर उसका खर्च करता गया, उसका खजाना खाली होता जा रहा था और जो जरूरत की चीजें होती हैं, भोजन हो या रास्ता हो या शिक्षण के सामग्री हो, उसके लिए उसके पास पैसा कम होता गया। उसके बाद जब उसने शरीर छोड़ा तो जो भी प्रजा थे वो सब उनको गाली देने लगे और थोड़े ही समय के बाद जो भी वो संगमरमर के मूर्तियां थे उन सबको तोड़कर वो रास्ता बनाए और जो भी दूसरे सामग्री थे वो सब बनाए और 10 साल के अंदर ही उस राजा का कोई भी मूर्ति उस राज्य में नहीं रहा। उसके बाद एक छोटा सा एक अधिकारी आया, एक फूल बनाया, लेकिन उस फूल बनाने का वो हॉनेस्ट जो उसका प्रयास था वो जारी रहा और उसका नाम वो फूल के साथ ही जोड़ गया कि ये फूल ना वो एक बहुत ईमानदार व्यक्ति था ना, उसने बनाया। लेकिन राजा इतने करोड़ों के खर्च करके भी इतना मूर्तियां बनाए लेकिन उनका नाम कहीं का नहीं रहा। तो इससे हमको ये सीख मिलता है कि राजनीति में हम जो काम करते हैं उससे हम जाना जाते हैं, ना कि हम हमारे जो पद है, औहदा है, उससे हमारा नाम नहीं होता, लेकिन काम से हमारा नाम होता है। तो अभी हम मंच पर हमारे विशेष अतिथिगणों को मैं स्वागत करना चाहती हूं। पहले हमारे इस राजनीतिज्ञ सेवा प्रभाग के अध्यक्ष बीके लक्ष्मी दीदी जी जो मैसूर से पधारे हैं, उनको मैं अपना स्थान ग्रहण करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं। और उसके साथ साथ अपने शुभ विचार प्रस्तुत करने के लिए पूर्व विधायक महाराष्ट्र से जो पधारे हैं, श्री सूर्यकांत पलांडे जी, मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूं। आप कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। और श्री वीरेंद्र रघुवंशी जी, पूर्व विधायक मध्य प्रदेश, वो भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और शुभकामनाएं प्रस्तुत करने के लिए हमारे पूर्व विधायक महाराष्ट्र से श्री विनायक पाटिल जी पधारे हैं, वो भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। और उसके साथ तेलंगाना के पूर्व विधायक श्री गंगाराम सौदागर जी हमारे बीच में हैं, उनसे भी निवेदन करती हूँ कि वो भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और बिहार के पूर्व विधायक श्री प्रेम रंजन पटेल जी, उनसे भी मैंने अनुरोध करती हूँ कि वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। और रोहतक के पूर्व विधायक श्रीमती सरिता नारायण जी, उनसे भी मैं अनुरोध करती हूँ कि वो भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जोधपुर के राज्यसभा के पूर्व सांसद श्री राजेंद्र गोलोट जी, वो भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और विशेष अपने अनुभवों की धारा से उस अमृत को पिलाने के लिए हमारे बीच में आज तेलंगाना के पंचायती राज एवं ग्राम विकास के मंत्री श्रीमती दसारी अनुसुईया जी हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करती हूं कि वो भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और राजनीतिज्ञ सेवा प्रभाग के राष्ट्रीय समन्वयक मैसूर से आए हुए बी के रंगनाथ भाई जी, उनसे भी मैं अनुरोध करती हूं कि वो भी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हमारे इस स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो भारतीय संस्कृति है, सबको अतिथि सत्कार से स्वागत करना, तो मैं हमारी बहनों से अनुरोध करती हूं कि वो मंच पर आए हुए हमारे अतिथि गणों का स्वागत करें। अभी तक जो आप सब में जो उमंग उत्साह था वो और भी बने रहे, तो जो भी बर्मा बांग्ला में बैठे हैं वो सभी भारत में आ जाएं। सभी जो भी बैठे हैं सभी साथ में आएंगे, तो आगे आ जाएं सभी। क्योंकि परमात्मा के शक्ति और आशीर्वाद जो बांट रहे हैं, तो लेने में हमको आगे ही रहना है। तो संगीत आत्मा की गहराइयों को छू लेता है, और जब संगीत में आध्यात्मिकता का रंग घुल जाता है तो वातावरण अलौकिक हो जाता है। तो इसी पावन भावनाओं को शब्दों में फिरोकर प्रस्तुत करने के लिए ज्ञान सरोवर से हमारे आदरणीय बीके दीपक भाई जी को मैं निमंत्रण करती हूँ कि वो अपने सुमधुर आवाज में दिव्य गीत का प्रस्तुत करें। बीके दीपक भाई जी,
ओम शांति। सभी बोलेंगे एक बार और, ओम शांति। हर धर्म में हर मजहब में परमात्मा को याद करते हैं, उसे प्यार करते हैं, उसकी महिमा गाते हैं। तो ये जो गीत है ये परमात्मा की महिमा का गीत है, जिसमें परमात्मा के प्रति सम्मान भी है, प्यार भी है। और इस गीत को सुन के आप सभी को उमंग उत्साह आएगा। स्टार्ट करें।
गजब है गजब तू गजब है गजब तू रूहों का वालिद गजब है गजब तू गजब है गजब तू गजब है गजब तू रूहों का वालिद गजब है गजब इस जमी पे है तेरे करिश्मे अजब इस जमी पे है तेरे करिश्मे अजब तू गजब है गजब तू गजब है गजब तेरी खुशबू रूहानी से महके जहां तेरी खुशबू रूहानी से महके जहां जर्रे जर्रे में है तेरी खुशबू यहां तुझ में दिखते सितारे और सूरज गगन तुझ में दिखते सितारे और सूरज गगन तू है दरियाए मोहब्बत और दरियाए अमन तुझको कहते खुदा तुझको कहते खुदा तुझको कहते हैं रब तुझको कहते खुदा तुझको कहते हैं रब तू रूहों का वालिद गजब है गजब तू गजब है गजब तू गजब है गजब तू रूहों का वालिद गजब है गजब तू रूहों का वालिद गजब है गजब हुक्म तेरे से गाती है नगमे हवा हुक्म तेरे से गाती है नगमे हवा तेरी रहमत से रहती उमंगे जहां तेरी ताकत है जिसमें वो है बेफिकर तेरी ताकत है जिसमें वो है बेफिकर हर लबों पे यहाँ बस तेरा ही जिक्र तुझको चाहते हैं सब 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 तू रूहों का वालिद गजब है गजब तू 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 रूहों का वालिद गजब है गजब थैंक यू ओम शांति
बहुत सुंदर गीत प्रस्तुति से अशोक भाई ने सबका मन मोहित किया और आगे हमारे इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए मैं सूर्यकांत पलांडे जी को मैं स्वागत करती हूं। सूर्यकांत पलांडे जी कांग्रेस के पूर्व नेता हैं। उन्होंने 1980 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिकर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन होकर विधायक के रूप में कार्य किया, विधायक के रूप में अपने कार्यकाल के बाद में भी वे जनसेवा तथा ग्रामीण कृषि विभाग के क्षेत्र में सक्रिय रहे। ऐसे हमारे सूर्यकांत पलांडे जी से मैं निवेदन करती हूँ कि वो अपना शुभ विचार व्यक्त करें।
प्रजापिता जी, ब्रह्म कुमारी संस्था की ओर से आयोजित किए हुए राजनीतियों का सम्मेलन में आज के समापन पत्र के अध्यक्षा बीके लक्ष्मी दीदी, मंच पर उपस्थित हुए विभिन्न स्टेट से आए हुए मिनिस्टर्स, सांसद, एमएलएज, एक्स एमएलएज, सामने बैठे हुए देश के विभिन्न स्टेट से आए हुए प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्था के सब दीदी, अन्य सर्व भाइयों बहनों, मैं मेरे भाषण के शुरुआत में आप सब लोग ये आयोजित किए हुए सम्मेलन में आते यहाँ हाजिर रहे और ये संस्था के प्रति देश में अपने जो काम चल रहा है वो काम के प्रति हम सब लोगों को हमारे सहित जो आत्मविश्वास है, आदर है, प्रेम है, ये प्रेम व्यक्त करने का मौका आप सबने लिया, इसलिए मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं तीन दिन से यहाँ मेरे महाराष्ट्र के आए हुए, हमारे पहले दिन हर्षवर्धन जी पाटिल एक्स मिनिस्टर आए हुए थे, पुणे के महापौर दिलीप बराटे जी आए थे, दूसरे दिन हमारे दूसरे मिनिस्टर जो है हमारे सामने बैठे हुए हैं ये लक्ष्मण राव जी ढोबले साहब आए थे, तीसरे दिन हमारे साथ में पहले दिन से शुरू में मेरे साथ में हमारे जो दोस्त हैं विनायक राव जी पाटिल, ये शुरू से प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्था से बहुत ही अपलेपन से समाविष्ट हुए हैं, उनके ओर से उन्हीं के ओर से हमें भी यहाँ आने का मौका मिला, ये मैं यहाँ नमूद करना चाहता हूँ। देश में राजनीति में जो अभी का दिखाई दे रहा है सब चल रहा होगा, तो आज का विषय हमारे सामने है राजनीति का नैतिक आधार, सत्ता और पद से ऊपर सेवा, सत्ता और सत्ता के ऊपर सेवा। इस सेवा प्रिंसिपल मान के यहाँ जो हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं ये जानने के लिए आए हैं, देखते हुए बड़ी खुशी होती है कि इतना बड़ा काम, इतना बड़ा संस्था अपने देश में काम कर रहे हैं और ये काम हमारे सब तरह से जिस तरह से हो रहा है इसमें लेडीज को, बहनों को अधिक तरह से आगे लाने का मौका देने का काम यह संस्था के ओर से हो रहा है, ये मैं यहाँ अभिमान से नमूद करना चाहता हूँ। राजनीति में महाराष्ट्र के अभी के जो चल रहे हैं वो कुछ मुद्दे दो मिनट में मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सेवा सबसे महत्वपूर्ण है, ये आप सब लोगों के ध्यान में है, ये विषय यहाँ समाविष्ट करने की ओर से वजह से हम सब जान गए हैं। सत्ता महत्व की नहीं है, राजनीति महत्व की नहीं है, मगर सेवा महत्व की है। सेवा प्रिंसिपल मान के परमात्मा आत्मा को हम अगर बलवान करेंगे, शक्तिशाली बनाएंगे, तो फिर शरीर है, बुद्धि है, मन है, आत्मा है, ये सब इकट्ठा कैसा हम कर सकते हैं और आत्मा को हम बल देके राजनीति में अधिक अच्छी तरह से आगे कैसे देश को ले जा सकते हैं, ये प्रिंसिपल यहाँ हमें सीखने को मिल रहा है, ये समाधान की बात है। महाराष्ट्र का मैं बोल रहा हूँ, हमारे ढोबले साहब हमारे मिनिस्टर थे, रहे 25-30 साल, उन्होंने अच्छा काम किया, नेता है, उनके जैसा वक्ता हमारे महाराष्ट्र में नहीं दिखाई देता। मराठी में तो उतना अच्छा भाषण वो करते हैं कि 50-50 हजार, 1-1 लाख लोगों की सभा में वो हमारे नेता सब लोग उनको प्रेफर करते हैं। तो हिंदी हमारे लिए थोड़ी सी भाषा बोलने में दिक्कत आती है, तो भी ऐसा है, आज सुबह का मैं सत्र देखा, सुबह के सत्र में जिन जिन लोगों ने यहाँ भाषण किए तो सब लोगों ने अच्छा हिंदी में भाषण किया, सब मिनिस्टर लोगों ने अच्छा हिंदी में भाषण किया, और जितने जितने भी नेताओं का भाषण हो गया, हमारी दीदी का भाषण हो गया, आशा दीदी का भाषण हो गया, वो सुनको एक नया ताकत हम बोलते हैं, शक्ति हम बोलते हैं, ये यहाँ आके प्राप्त होती है, ये देख के, ये सब काम करके, ये हम सब लोग यहाँ से शक्ति लेके जाएंगे, एक नया बल अपने में अपने मिलेगा इसने, और इस उसी तरह से ये सेवा का प्रिंसिपल सामने रख के जो काम हमारे देश में हो रहा है, तो 70-80 साल हो गए पूरे अपने डेमोक्रेसी में अपने देश में, मगर अभी ये 10-15 साल में हमारे महाराष्ट्र में जो राजनीति हो रही है, सेवा की बात सब भूल गए हैं, राजकारण अलग दिशा से जा रहे हैं, चुन के आने के लिए पहले लोगों में जाना था, जाना पड़ता था, चुन के आने के लिए मतदारों से विनती करते थे, मतदार पसंद करते थे, वही चुन के लोग आते हैं, अभी हमारे यहाँ ऐसा हो गया है, महाराष्ट्र में हो गया, बालासाहेब ठाकरे जी के चुन के आए हुए एमएलए सब के सब निकल दिए गए, वहां से उधर दूसरे पार्टी में ले गए, उनका होने के बाद में अभी शरद पवार साहब जी के राष्ट्रवादी कांग्रेस है, वहां भी ऐसा हो गया, जो भी चुन के आए हुए एमएलए हैं उनको ही ऐसा ही क्या बोलते हैं उसके लिए, हम एक पार्टी से दूसरा पार्टी में जाने का ये करता है, सेवा का यहाँ सेवा कहाँ है, सेवा यहाँ कहाँ है, महाराष्ट्र के राजनीति में मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा स्टेट वह है, इसलिए मैं आपके सबके लिए ये मुद्दा रखना चाहता हूँ कि अगर ऐसा डेमोक्रेसी में हो जाएगा तो पूरा लोकशाही जो अपने देश के हैं ये दिक्कत में आ जाएगी, और इसलिए ये जो हो रहा है इसके बारे में भी प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ऐसे संस्था में ये जैसे हमारे लिए आपने इतना अच्छा शिविर यहाँ आयोजित किया, उसी तरीके से अभी ये जो नया राजनीति का शुरू हो गया है लफड़ा, ये लोकशाही के लिए ठीक नहीं है, हम चाहते हैं गरीबों का राजकारण हो, किसानों का राजकारण हो, युवकों का राजकारण हो, भगिनी का राजकारण हो, भगिनी के लिए प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्था ने देश में और प्रदेश में यहाँ विश्व के मोर देन 140 कंट्रीज ने इतना बड़ा काम किया है, इसका हमें सार्थ गौरव है, अभिमान है, और इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, ये पूरा काम आप सब यहाँ आके हमने देखा, मैंने इतने दिन पर जब तक सीखा था विनायक राव हमने कॉलेज में हाईस्कूल में कि ये जग में जो आश्चर्य है तो 14 आश्चर्य है, तो मैंने अभी सुबह ये सब देखने के बाद में मैं जब मिला लक्ष्मी जी दीदी से मिला, आशा दीदी से मिला, तो उनसे मैंने कहा तो अब तक तो 14 बोल रहे थे, मगर ये सब देखने के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है एक 15वां आश्चर्य हुए, और ये है प्रजापिता ब्रह्म कुमारी का काम। इसी तरीके से ये संस्था जिस तरीके से काम कर रही है, इसे देखकर सब इतना बड़ा काम हो गया, नशाबंदी का काम आपने हाथ में लिया है, और अभी सेवा का पॉइंट आपने जो रखा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे महाराष्ट्र में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी का काम हमारी बहुत जगह more than 30% ऑफ द विलेजेस वहाँ काम अच्छा तरीके से दीदी कर रही है, जो लोगों के सुख दुख में जाके वहाँ सबको ये अपने संस्था का ओर से कैसा काम कर रहे हैं वो सब बताती है, अच्छा तरीके से लोगों में जाके काम चल रहा है, हमें भी उन्होंने वो अर्चना दीदी ने बोला कि आप काका आइए ये कन्वेंशन में आप आओगे तो आपको नई ऊर्जा मिलेगी, अधिक अच्छा तरीके से काम करने को आपको ताकत मिलेगी, यही ये आकर मुझे नमूद करना है कि ये यहाँ आके अभी जैसे आपने एक घंटा पहला किया जो ये करके एक प्रोग्राम अच्छा किया, ये खाली प्रोग्राम नहीं था, वो मेडिटेशन तो करने ही थे, मगर करते करते एक घंटा हम सब लोगों को उन्होंने वो जो बोलते हैं वो सब हाँ प्रैक्टिकली चार्जिंग किया, और आप सब लोगों ने इसमें बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया, आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ, दीदी आपने यहाँ आने की अपॉर्चुनिटी हमें दी, संस्था को मैं धन्यवाद देता हूँ और मेरा भाषण यहाँ समाप्त करता हूँ।
सूर्यकांत पलांडे जी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। राजनीति जब नैतिकता और सेवा भाव से जुड़ती है तो समाज का नवनिर्माण होता है। तो आज हमारे बीच देश के कोने कोने से आए हुए प्रबुद्ध राजनेता उपस्थित हैं, जिन्होंने अपने जीवन में न सिर्फ सेवा को सर्वोपरि रखा लेकिन अपने शुभ विचार और शुभ कामनाएं प्रस्तुत करने के लिए इतने दूर हमारे स्वागत को स्वीकार करके अपने समय और संकल्प लेके शक्ति को लेके यहां तक पहुंचे। जो जनसेवा से राजनीति का सेवा साथ साथ चलता रहे उसके लिए अपने शुभ विचार व्यक्त करने के लिए अभी हमारे बीच मध्य प्रदेश के श्री वीरेंद्र रघुवंशी जी पूर्व विधायक हमारे बीच में पधारे हैं। मैं उनसे अनुरोध करती हूं कि वो अपना अनुभवयुक्त शुभ विचार प्रस्तुत करें।
ओम शांति, ओम शांति। सर्वप्रथम शिव बाबा के चरणों में प्रणाम करते हुए, उनका स्मरण करते हुए, प्रजा पिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्था द्वारा इस अद्भुत राजनीतिज्ञों के सम्मेलन में हम सबके बीच मंच पर विराजित आदरणीय दीदी बीके लक्ष्मी जी और मंच पर बैठे हुए सभी हमारे जनप्रतिनिधि नेतागण सभी साथियों का अभिनंदन है। समक्ष में भी समकक्ष अभिनंदनीय सभी देशभर से पधारे हमारे जनप्रतिनिधि नेतागण और संस्था के विराजित सभी दीदियां बहन और भाइयों, आप सबका बहुत अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम मैं संस्था के समस्त टीम को, दीदियों को, मैनेजमेंट को बहुत हृदय से अपनी ओर से, देशवासियों की ओर से, अपने प्रदेश की ओर से, अपनी विधानसभा क्षेत्र के समस्त परिवारजनों की ओर से बहुत आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि इस तरह का अभिनव कार्यक्रम राजनीतिज्ञों के साथ समाज से भी संस्था के रूप में आपने आयोजित किया है। आज पूरे देश में और हर प्रदेश में इस लोकतंत्र को कमजोर करने का जो क्रम प्रारंभ हुआ है, इसको संभालने का जो कदम ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा हाथ आगे बढ़ाया है, हम सब देशवासी आपके ऋणी रहेंगे, आपका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत आवश्यकता है इस बात की और हम सब राजनीतिक लोगों के लिए ये एक चैलेंज और जनजागरण का काम भी है। हमें ये सोचना है कि समाज, देश और प्रदेश के और हमारे क्षेत्र के लोग राजनीतिक पार्टियों को, उनके प्रतिनिधियों को राजा स्वरूप बनाकर प्रदेश और देश में हमें स्थापित करते हैं। और मुझे कहते हुए दुख भी है कि आज समाज से भी संस्थाओं को आगे बढ़कर राजनीतिज्ञों का और सरकारों का इस ओर ध्यान आकर्षित कराना पड़ रहा है, जो हमारा कर्तव्य और दायित्व है उसका स्मरण हमें कराना पड़ रहा है। इससे अधिक अपमानित बात राजनीतिक लोगों को और सरकारों को कुछ हो नहीं सकती। अभी आदरणीय पलांडे जी ने कहा कि महाराष्ट्र में विधायक इधर से उधर गए, तो मैं अपने प्रदेश का भी स्मरण आपको कराना चाहता हूं। 2020 में बनी हुई एक पार्टी की सरकार को दूसरी पार्टी की सरकार ने एक तरह से हित लाभ दिखा करके 22 विधायकों को इधर से उधर करके सरकार बदलने का काम मध्य प्रदेश में भी हुआ था और हम सब शर्मसार हुए थे उस समय। मैं 18 से 23 के उस पूरे दृश्य में सम्मिलित भी था और सरकार जिस पार्टी ने बनाई मैं उस पार्टी में था। पर 23 से अभी वर्तमान में इस वर्ष चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जनजागरण का काम हमारे लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए, पूरे देशवासियों के, देश के लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। लोकतंत्र इस समय विकलांग की स्थिति में आ गया है, स्वस्थ लोकतंत्र की स्थिति नहीं है। जो पिछले 10-12 सालों से या पिछले 5 वर्षों से राजनीतिक पार्टियों ने सिर्फ एक लक्ष्य बना लिया है कि सरकार और सत्ता हमें हथियानी है, देश समाज और समाज के और परिवार के लोगों की तरफ पार्टियों का ध्यान न होकर मैं थोड़ा इस विषय पर खुला अपना विचार रखना चाहता हूं, क्योंकि इसी पीड़ा से पीड़ित होकर आज पिछले एक वर्ष से मैंने जिस पार्टी में था उस पार्टी से भी इस्तीफा देकर ये चिंतन और मनन मैं पिछले एक साल से कर रहा हूं कि इन हालातों में क्या राजनीति में रहना है या राजनीति से घर बैठ जाना है। और ऐसे समय पर ब्रह्म कुमारी संस्था ने, आदरणीय दीदियों ने ये कार्यक्रम रखा है। मुझे पिछले 3 दिवस से लगातार मैं ये चिंतन कर रहा हूं, पर ये इतना जरूर मैं यहां से प्रेरणा लेकर जा रहा हूं कि चुनाव लड़ें या न लड़ें, लेकिन घर बैठकर राजनीतिक पार्टियों को ये मनमानी नहीं करने देनी है, जनजागरण में भी शामिल रहना है। ब्रह्म कुमारी की जो हमारे यहां पर शाखाएं हैं उनसे भी जुड़े रहना है और इस मिशन को मैं ये संकल्प लेता हूं बाबा का स्मरण करके कि मैं चुनाव लड़ूं या न लड़ूं, लेकिन इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए, जनजागरण के लिए मैं अपनी शुपरी की संस्था और मेरे जिले के आसपास की संस्थाओं में संपर्क में रहकर, दीदी आपको मैं ये वचन देता हूं कि पूरे प्रणपण से जिस तरह से हम क्षेत्र में चुनाव लड़ते हैं उस शक्ति के साथ आपके इस मिशन में बिल्कुल 24 घंटे खड़े रहेंगे। ये बाबा का स्मरण करके मैं संकल्प लेकर के जा रहा हूं और बहुत दुखी मन से मैं अपने राजनीतिक साथियों से इस मंच के माध्यम से पूरे देश और प्रदेश में ये निवेदन और आग्रह करना चाहता हूं कि हमारा मान हमारा सम्मान आज जनता जनार्दन के बीच में वो स्थिति में नहीं है जो पिछले 10, 15 और 20 सालों पहले हुआ करता था। और ये सम्मान राजनीतिक पार्टियों ने और हमारे कुछ साथियों ने इधर से उधर होकर या अपने कर्तव्य का निर्वहन न करके हमने स्वयं इसको कम किया है, और इसको बढ़ाने के लिए जनजागरण के रूप में प्रेरणा लेकर हम सब जाएंगे अपने अपने क्षेत्रों में, अपने जो साथी पदों पर बैठे हैं या जो आने वाले समय में चुनाव में फिर चुनकर आने वाले हैं, उनको आप सब ये प्रार्थना और निवेदन करें कि अपनी छवि को, राजनीतिक पार्टियों की छवि को ठीक करके जनसेवा को आगे रखें और पद और प्रतिष्ठा को पीछे रखें। राष्ट्र प्रथम, समाज प्रथम और जनसेवा प्रथम, इस मंत्र के साथ हम सब आगे बढ़ें। विषय तो बहुत है बात करने के लिए, हम राजनीतिक लोगों को बोलने के लिए जब खड़ा किया जाता है तो हम घंटों भी बोल सकते हैं, अनेक विषयों पर बोल सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही निवेदन करके पुनः ब्रह्म कुमारी संस्था को आप सबकी ओर से, मेरी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए, आपका आभार व्यक्त करते हुए कि सही समय पर हम सबको जगाने का काम आप देश में कर रहे हैं, मैं आपका सदैव आभारी हूं और देशवासी भी आभारी रहेंगे। जन जन जो हमसे अपेक्षा करता है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो आज हम सब के विषय में बहुत अच्छी सोच नहीं रखता। राजनीतिक लोगों के सामने जी हजूरी के रूप में चाहे हमें खुश करने के लिए कुछ भी वो कहते हों, माला पहनाते हों, लेकिन जब वो अकेले में चर्चा करते हैं तो हमारी छवि कहीं ना कहीं जनता जनार्दन के बीच में धूमिल हुई है, इसे हम नकार नहीं सकते। मैं बहुत स्वतंत्र रूप से इसलिए कह पा रहा हूं कि मैं आज एक साल से किसी पार्टी में नहीं हूं और चिंतन और मनन कर रहा हूं, जैसा मैंने पूर्व में कहा कि हमें क्या राजनीति में रहना है, इतने दूषित वातावरण में कैसे हम काम करें। ईमानदारी दूर दूर तक नहीं है, बहुमत में लोग एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि पैसा कैसे बनाना है, धोखा कैसे देना है, पद कैसे हथियाना है। और दुख तब होता है जब पार्टियां बड़े स्तर पर इस विचारधारा में बह करके बनी हुई सरकारों को गिराने का काम भी करने लगी हैं। मुझे लगता है कि राजनीति में अब कुछ बचा नहीं है। देश की जनता को, समझदार लोगों को, समाज से भी संस्थाओं को आना ही पड़ेगा और हम सबको ठीक करना पड़ेगा। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं देश के राजनीतिक लोगों से कि उस दिन का इंतजार मत करिए मेरे साथियों कि नेपाल जैसा कोई दृश्य हमारे भारत में भी घटे। मैं बहुत दुखी मन से कहना चाहता हूं, किसी भाई को बुरा लगे तो मुझे माफ करिए, मैं हाथ जोड़ करके माफी भी मांगता हूं। और नेपाल की जैसे लोकतंत्र में पुनरावृत्ति इस भारत में न हो, मेरी ये आवाज, मेरी ये भावना देशवासियों तक पहुंचे। मैं यही अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए शिव बाबा से प्रार्थना करूंगा कि आप हम सभी को सद्बुद्धि दें और हम सबको जागृत करें और ब्रह्मकुमारी संस्था को इतनी शक्ति प्रदान करें कि उनका मिशन कामयाब हो, हम सब उनके मिशन में साथ खड़े हैं। ओम शांति, ओम शांति।
अपने मन की उद्गार सच्चाई और ईमानदारी से उन्होंने व्यक्त किया, उनकी भावनाओं को प्रकट किया कि आज राजनीति किस ओर पर, किस दौर पर गुजर रहे हैं। एक जमाना था कि सेवा मतलब निस्वार्थ सेवा, लेकिन अब सेवा का डेफिनेशन ही बदल गया है। तो जनता को जो हम देंगे वही हमको वापस मिलेगा। तो इस पर मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक बार एक ऐसे आप जैसे एक नवयुवक चुनाव जीत गए, पहाड़ी का इलाके से उन्होंने चुनाव जीता और पहाड़ी के ऊंची चोटी पर जाकर चिल्लाने लगा कि मैं ही महान हूं, मैं ही यहां का रक्षक हूं और सबको मेरी बात माननी होगी। तो पहाड़ से जो एको दूसरी तरफ से गूंज उसको वापस मिलने लगी कि मेरी बात माननी होगी, माननी होगी, माननी होगी। और उस नवयुवक को ऐसा लगा कि कोई मेरे नकल कर रहे हैं। तो उसने फिर से दोहराया, चिल्लाया कि सब मूर्ख है, विद्रोही है। और फिर से उसको वही सुनाई दिया कि सब मूर्ख है, विद्रोही है, सब मूर्ख है, विद्रोही है। उसको बहुत बेचैनी हुई और वो वापस अपने गांव गया, नीचे उतरा और वहां एक बुजुर्ग बैठे थे और बुजुर्ग से पूछा कि मैंने तो चुनाव जीत लिया लेकिन कोई भी मेरे को चाहते नहीं है, लोग यहाँ के शहर के लोग सब मेरे विरोधी हैं। तो बुजुर्ग उसको वापस उस शिखर के चोटी पर लेके गए और उनको बोला कि आप जो बोलना चाहते हो ना वो उसका भाव आप बदल के बोल के देखना। उस युवक ने फिर सोचा और फिर उसने चिल्लाया कि मैं यहां आपकी सेवा के लिए आया हूं, तो फिर वो आवाज गूंज उठा कि सेवा के लिए आया हूं, सेवा के लिए आया हूं। तो उसको बहुत अच्छा लगा, अच्छा सब मेरे सेवा के लिए यहां आए हैं। और फिर उसने दोबारा उसने चिल्लाया कि मैं आपकी बुद्धिमानी का सम्मान करता हूं। तो फिर वो पहाड़ी से वो गूंज आया कि मैं सम्मान करता हूं, सम्मान करता हूं। तो बहुत खुश हो गया कि सब मेरे सम्मान करेंगे, सम्मान करते हैं। तो इसी प्रकार वो फिर वापस उतर आया और अपने काम में लग गया बहुत खुशी खुशी से। तो इससे हम जान सकते हैं कि जनता एक एम्पलीफायर जैसा है, हम जो उनको सुनाएंगे वही तेज आवाज या जोर आवाज से हमको वही हमको वापस मिलता है। यदि नेता अहंकार या दुश्मनी से उसकी भावना को फैलाता है तो जनता भी वही भावना से उनको देखेंगे। यदि नेता सबकी सेवा, सम्मान और विनम्रता की भावना से सबको देखेंगे तो वो भावना जरूर वापस मिलेगा। तो यही वीरेंद्र रघुवंशी जी के भी उद्घार थे कि आजकल सबसे हम चाहते हैं लेकिन हम क्या दे रहे हैं उसका शायद कहीं वो चूक रह गया है। तो इसलिए हम सब यही संकल्प लेंगे कि यहां से जाने के बाद जो सबसे हम चाहते हैं वही हम सबको देंगे। और अभी सत्र को आगे बढ़ाते हुए मैं विनायक पाटिल जी को बुलाने से पहले हमारे जो अध्यक्ष और माननीय मंत्रीगण हमारे बीच में उपस्थित है उनका स्वागत करने के लिए मैं बहनों से निवेदन करती हूं। सारे अनुसूया जी उनका बहुत बहुत आदर से स्वागत है। तेलंगाना से आप हमारे बीच में दो दिन से उपस्थित हैं और सब सत्र बहुत एक्टिव और अलर्ट होके सब सुन रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हमारे बीच में राजनीतिक जैसे विभाग के अध्यक्ष बीके लक्ष्मी जी पधारे हैं, उनका भी बहुत आदर से स्वागत करते हैं। और अभी महाराष्ट्र से हमारे पूर्व विधायक श्री विनायक पाटिल जी हमारे बीच में पधारे हैं, उनसे मैं अनुरोध करती हूं कि वो अपना शुभकामनाएं व्यक्त करें।
ओम शांति। ये समापन सत्र के अध्यक्षा आदरणीय लक्ष्मीबेन जी, यहां उपस्थित श्रीमती अंसारी अनुसूया जी, पंचायत राज के मिनिस्टर तेलंगाना, साथ में सूर्यकांत पलांदे भाई जी, साथ ही साथ रघुवंशी भाई जी, प्रेमचंदन पटेल, गंगाराम सौदागर, श्रीमती सविता नारायण और गहलोत, साथ में हमारे यहां उपस्थित देश से विभिन्न भागों से आए हुए राजनीतिक ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार जी। आज ये समापन समारोह है। मैं थोड़े से मेरा थोड़ा परिचय देता हूं और उसके बाद आगे बात बताऊंगा। ये संस्था से मैं 1980 से जुड़ा हुआ, तब मैं ब्लॉक ड्रिवन बोर्ड का चेयरमैन था। हम शिविर के लिए ऑल इंडिया से 21 लोग आए थे। पांडव भवन में हमारा शिविर दादी ने, निरोहर भाई ने, जगदीश भाई ने किया था। तब से लेकर अभी तक इस संस्था से जुड़ा हूं। बताने बात ही है कि वहां एक ज्ञान सरोवर नहीं था, शांतिवन नहीं था, मानस सरोवर नहीं था, ऊपर का जो हॉल है वो हॉल भी नहीं था। इस 21 लोगों का 7 दिन का पूरा शिविर होने के बाद जगदीश भाई और हम 7 दिन एक रूम में रहे। जिन्होंने इतने किताब लिखे हैं, हम दादी उनको बोलती थी ये हमारा संस्था गणेश है। उनके जो स्पीच, उनका लिखन, उनकी किताब, उनके साथ रहने का 7 दिन अनुभव हुआ, तो उन्होंने मेरे को जो बताया है कि आज तक दुनिया में जो भी धर्म स्थापक हुई, जो भी संत महात्मा हुए, उन्होंने धर्म तो स्थापन की, लेकिन उस टाइम उस धर्म स्थापक को उसी टाइम के जमाने के लोगों ने तकलीफ दी, चाहे यीशु ख्रिस्त हो, चाहे मोहम्मद पैगंबर हो, चाहे कोई भी जो संत महात्मा थे उसको ही तकलीफ दी। ध्यान सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, बाद में धर्म बढ़ी। ये जो सब स्थापना हुई तो किसने की, चाहे बड़ा कोई भी हो, लेकिन वो तो देहधारी है। लेकिन ब्रह्मा कुमारी की स्थापना जो हुई तो शिव परमात्मा ने की, कोई आदमी ने नहीं की, कोई देहधारी ने नहीं की। इसी कारण इतने धर्म होते हुए भी, इतने साधु संत होते हुए भी दुनिया में गिरावट भी आ गई नीति की। नीतिमत्ता बड़ी नहीं, उन्होंने क्या बुरा कर्म किया, क्या कुरान में, बाइबल में या कोई झूठी बात तो नहीं लिखी, सच तो लिखा, लेकिन जो लिखा वो सब देहधारियों के द्वारा हुआ, इसी कारण उसको आगे बढ़ने के लिए तकलीफ हो गई। आदमी के लिए अंदर जो शक्ति है, शक्ति नहीं है, लेकिन ये जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने जो कार्य किया है वो कार्य स्वयं परमपिता परमात्मा ने किया है। उसके आधार से चलेंगे तो शक्ति बढ़ेगी, हम उसको योग बोलते हैं। योग के कारण आत्मा की शक्ति बढ़ेगी तो आदमी सच बोल सकता है, आदमी झूठा नहीं बोल सकता है। और उसी कारण ये जो ब्रह्मा कुमारी संस्था में हमारे जितने भी भाई बहने हैं सभी को देखे सामने बोलते सेवा चाहिए। सेवा का एग्जाम्पल ये देखो ना, इतने बहने हैं 50,000, एक ही बहने के नाम पर बैंक में खाता नहीं, एक भी बहने के नाम पर कोई भी जमीन नहीं है, जगह नहीं है, फिर भी सेवा करते हैं, इसको निस्वार्थ सेवा बोलते हैं। और हम जो बात तो बुरी लगती है लेकिन बोलने की सेवा रहता नहीं, हम जो लोग राजनीति में आते हैं तो निस्वार्थ सेवा माना क्या है, सेवा माना जिसके कारण कोई पैसा नहीं लेता, कोई अपेक्षा नहीं करता और सेवा करते, उसको बोलते हैं सेवा। मैं उदाहरण देता हूं, जो माताजी सेवा करते हैं उसको छुट्टी का कोई संडे लियो, आज संडे है ना, माता के लिए छुट्टी का छुट्टी नहीं है। घर का कारोबार करती है, पहले सबसे पहले उठती है, बाद में सोती है, बच्चों का सभी का काम करती है, पेंशन भी नहीं और कोई पगार भी नहीं, तभी काम करती, उसको करती है सेवा। उसी अनुसार हमारे बहने कोई देश विदेश में सेवा करने मेरे को मौका मिला ब्रह्मा को संस्था के द्वारा। जब वहां हम गए फॉरेन में, तभी ऑल इंडिया शुगर फैक्ट्री के सभी लोग थे, वहां जाके देखा तो उन्होंने बोला कि इतना चलता है विदेश में काम, दादी ने बोला कि ऐसे भी आ रहे। तो एयरपोर्ट पर लेने के लिए ब्रह्मा कुमार संस्था के 2 गाड़ी आई थी, मैंने को लिख दी, लेकिन गवर्नमेंट कोई गाड़ी नहीं आई। तो वो लोग बोले कि ये संस्था देश विदेश में इतनी चलती है, ये कैसे आ गई, तो बोला हमारी दादी का आदेश है, उस अनुसार चलती, एक आदेश के अनुसार ये सभी चलते। सबको लेके हम उनके गेस्ट हाउस पर छोड़ दिया, हम तो आए संस्था के सेंटर पर। तो उन लोग बोले कि यहाँ भोजन हमें दे दो, दादी को बोलते हैं, तो उन्हें वहां ही भोजन मिला। 35 लोगों को 7 दिन का सभी खाना पीना, उनका कोर्स कहा वहां उधर भी हुआ विदेश में भी, ये संस्था का काम है। जब यहाँ एक बार
सभी को कौन कौन आए नहीं पता था, और इंदिरा गांधी आई, राजीव गांधी आए, पीवी नरसिंह राव आए, मोदी आए, सब आए। पीवी नरसिंह राव ने एक ही बात बताई थी, हम देश के प्रधानमंत्री हैं, सत्ता है, पैसा है, लेकिन दादी आप जो काम करते हैं वो हम नहीं कर सकते। वो जो मिनिस्टर हाल है वहां प्रोग्राम उनका किया था, तो उनको मिलने के बाद बोले ये कैसी बात है, यहां सच ही बोलना पड़ता है, बोलता झूठा बोलना नहीं चलता। बाहर दुनिया वो कितना ही बोलेगी, क्या बोल दिए, और बोले कि चुनावी जुमला था इसलिए हमने बोल दिया है, चुनाव लेने के बाद वो सब भूल गए, ये बाहर की बात है। लेकिन जहां सत्यता चलता है वहां सत्य ही बोलना चाहिए, उस टाइम उन्होंने ये भी बात की। अनुभव तो बहुत है, जितना बताएंगे तो उतना कम है। अभी अध्यक्ष लक्ष्मीबेन जी यहां है, उनके यहां मेला का प्रोग्राम हुआ था मैसूर में, रंगनाथ भाई छोटे थे तो उन्होंने मेरे को सभी मैसूर स्कूटी पर घुमाया था और दिखाया था। लेकिन यही से नहीं, ये कहाँ के है, महाराष्ट्र के है, हम कहाँ के है, उधर कर्नाटक के है, ये बात नहीं कभी आती। 140 देश में चलता है, एक परिवार के अनुसार चलता है, कभी कोई मिलेंगे तो उनको मदद ही करेंगे, और उसी अनुसार ये संस्था बढ़ती रही है। और सभी बोल रहे विधायक जी अभी बोल रहे कि ये राजनीति में गिरावट क्यों आई और यहां बढ़ती क्यों होगी, ये हमारा एग्जाम्पल दुनिया के सामने है, एग्जाम्पल ये देखो बाकी दुनिया का नहीं देखो। इसी कारण ये संस्था की जो काम है तो काम निस्वार्थ सेवा है, और निस्वार्थ सेवा होने कारण उनका असर जरूर पड़ता है, स्वार्थ के कारण कोई असर नहीं पड़ता। हमारे लोग क्यों नहीं सुनते, इसका कारण मैं खुद का एग्जाम्पल मैं देता हूं। क्या हुआ, जब जगदीप भाई बोला कि सभी लोग बोलते कि एमएलए के लिए खड़े हो जाओ, तो मैं क्या करूं, तो बोले कि हम बाबा के बच्चे इंडिपेंडेंट हैं, किसी पार्टी में नहीं जाना चाहिए, करना है काम तो इंडिपेंडेंट करो। धुबले साहब को मालूम 85 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, लहर थी इंदिरा गांधी की, तभी मैं 85 में इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ और एक पैसा ही खर्च नहीं करता चुन के आया, और अखबार में आया ब्रह्मा कुमार विधानसभा में पहली बार। दादी ने फोन करके यहां मेरे को बुलाया, सम्मान किया, बाद में हमने असेंबली की शपथ ली। यही देखो काम क्या है, जब हम अच्छी तरह से निस्वार्थ सेवा करते तो उसका रिटर्न जरूर मिलता है। 10 साल काम करने का मौका मिला, दादी को स्टेट गेस्ट चीफ गेस्ट बनाया था, शिकागो में दादी आई गई थी। तो और धर्म है, धर्म की अध्यक्ष किसको बोलेंगे सम्मेलन की, तो बाकी जो क्रिश्चियन लोग है, मुस्लिम लोग है, हिंदू, सभी किसी को नहीं बुलाया, दादी को अध्यक्ष रूप में शिकागो बुलाया, दादी ने वहां प्रोग्राम किया। उसके बाद दादी बॉम्बे में आए, शरद पवार चीफ मिनिस्टर थे, हमने बोला दादी का इतना समय हुआ हम क्या करते, तो दादी को बोले चीफ गेस्ट ऑफ महाराष्ट्र बनाएगी, दादी को चीफ गेस्ट बने। एयरपोर्ट दादी आई तो रमेश भाई हम सभी थे, तो सभी ने बोला गवर्नमेंट ने आप बाजू चलो, अभी हमारी दादी क्या है महाराष्ट्र स्टेट की चीफ गेस्ट है, उसे हम सम्मान कर रहे, पीछे पुलिस आगे पुलिस बीच में गवर्नर की गाड़ी। दादी ने बोली पुलिस किस लिए बुलाया, मैंने बोला दादी आपका सम्मान गवर्नमेंट कर रही है, फिर आपने भाई बहन तो आई, इसी कारण दादी को वहां सम्मान इतना किया, पूरा दिन किया। और मैं एक बात इसलिए बोल रहा हूं कि गवर्नर की गाड़ी में अमेरिका राष्ट्रपति, रशिया के राष्ट्रपति, लंदन के पंतप्रधान सभी गवर्नमेंट लिए, लेकिन वो ड्राइवर ने बोला अभी तक किसी ने मेरे को नहीं पूछा कि आपने चाय पिया कि नहीं, लेकिन आपने दादी को मेरे को सुबह से शाम तक जो गुजरात मेल वहां जाने तक रात को 9 बजे तक मेरा स्टिफिन मेरे गाड़ी में रहा, अभी तक मेरा स्टिफिन कहां भी नहीं रहा, मैं खुद का खाता था, लेकिन दादी ने खाने के लिए भी चिंता की, भोजन की चिंता की, ऐसे कोई उन्हें आंखों में आशा आ गया, वो ड्राइवर ने बोल दिया। ऐसे हमारे दादी ने ये सेवा का भाव होता है तभी जरूर गरीब से गरीब आदमी वहां दे जाता है। तो ये सभी बातें बहुत है, लंबी चौड़ी 45 साल की है, तो इतना मैं यहां नहीं बताता, समय की सीमा है, क्योंकि हमारे स्टेज पे बोले कि अभी बंद करो, बंद करने पहले मैं बंद करता हूं। इस कारण मेरे को तो यह शुभकामनाएं, अनुभव की बात तो नहीं बताई, जब भी मौका मिलेगा तो करेंगे। इतना ही बताओ कि 2001 में यहां बहन जी को मालूम है, विश्लेषी बहन को, कि सभी महाराष्ट्र की सुशील कुमार शिंदे, विलासराव देशमुख, शंकरराव चव्हाण ये सभी वहां के लाए थे और यहां पूरा प्रोग्राम पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस ज्ञान सरोवर ने की थी, अच्छी तरह से की थी। वहां 700 लोग थे। अरे ये सभी क्यों बोल रहा हूं मैं कि उसी टाइम जो सभी आए थे, शंकरराव चव्हाण के और गृह मंत्री थे, उनको राजभवन में जगह मिलती थी। मेरे को बोला विनायकराव ये गवर्नर से भी अच्छा जगह है, मिली यहां ही मैं रहता हूं। बना जिनको गवर्नर हाउस जो है इधर का तो उन्हें पसंद, यहां ही पसंद आता, इसी कारण से भी यहां रह गई। और एक बात ये बताता हूं कि जब वसंत दादा थे यहां के राज्यपाल राजस्थान की, तो उनको मिलने के लिए मैं गया था। मेरे को बोला कि विनायकराव कितने लोग आए महाराष्ट्र के, मेरे पास 200 लोग आए, सभी को राजभवन भोजन के लिए बुलाओ। अभी गवर्नर बोल रहे भोजन के लिए बुलाओ, मेरी दिक्कत ऐसी आ गई ना, हम बाहर का खाते है, हाँ बोले तो भी दिक्कत, ना बोले तो भी दिक्कत। तो लेकिन एक बात बताए दादा, हम आते हैं लेकिन हमारी कंडीशन है, क्या कंडीशन है, दादी को पूछ के बिना हम नहीं आते। बोले एडीसी को बोला दादी को फोन लगाओ, दादी को फोन लगाया तो एडीसी ने दादी को फोन लगाया, दादी ने बोला कि ऐसा ऐसा ये आपका एमएलए इधर आ गया, आपका स्टूडेंट है, तो बोलते कि दादी के परिवार हम भोजन नहीं करते। दादी तो पूछा, दादी ने बोला देखो आप तो इस राजस्थान के प्रमुख है लेकिन भगवान का घर यहाँ है, यहाँ ही भोजन के लिए आओ ना। दादा ने हाँ बोल दिया और हमारे पांडव वन में वसंत दादा आ गए और भोजन तो किया। तो दादा का एक बात बताई दादा, यहाँ हमारे जो हिल स्टेशन है, बांधकाम की कमी है, रहने के लिए जगह नहीं है, तो हॉस्टल चाहिए। दादी ने बोला कार्ड छपाओ मेरा भूमि पूजन के लिए। रमेश भाई ने बोला, रमेश निर्वर भाई बोला आज बेकार हम कैसे काम करेंगे, परमिशन नहीं बांधकाम की, कार्ड कैसे छपाएंगे। तो दादा को बोला, दादा बोला कि ये तो काम करने का तरीका है, 34 स्टोरी तक पढ़ने वाला है दादा, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या किया उन्होंने, कार्ड छपाओ तो सभी काम हो जाएगा। वसंत दादा के नाम पर हमने भूमि पूजन कार्ड छपाया, एक ही छपाया, रमेश भाई स्टिक थे कानून की। तो बोले कि एक ही कार्ड छपा, मैंने बोला देखें क्या होता है। तो वसंत दादा ने उस कार्ड के ऊपर लेटर लिखा कलेक्टर को कि मैं इस दिन भूमि पूजन के लिए जा रहा हूं, पूरी फैसले पूरी करो। दूसरे दिन कलेक्टर शिव सभी आ गए, जो रिजेक्ट की फाइल वापस लिया और बोला कि ये परमिशन दे दिया और उषाणुदा सुखधाम का जो काम है, तो ये काम करने वाले प्रैक्टिकल वसंत दादा ईश्वर ऐसे लोग थे। अभी तो बाजू में तो चन्ना रेड्डी ने पूरी झोपड़ी निकाल दी, सब बातें बहुत हुई। तो इनके सभी लोग जो पॉलिटिकल है वो ब्रह्मा कुमारी के लिए सहयोग क्यों देते हैं, इनके लिए निस्वार्थ है। जहां रिसीट लेते हैं, ऑडिट होता है, वहां घोटाला होता है और यहां तो कोई बात ही नहीं होती। इसी कारण इस शुभकामना के साथ मैं मेरा विराम देता हूं।
बहुत बहुत धन्यवाद विनायक पाटिल जी का, क्योंकि अनुभवों का श्रृंखला तो बढ़ती रहती है, जितना भी सुनाए उतना ही कम रहता है। तो समय का ध्यान रखते हुए, सभी उसका भी ध्यान रखते हुए अपनी वाणी को विराम देंगे। और अभी मैं अनुरोध करती हूँ बिहार के विधायक रह चुके श्री प्रेम रंजन पटेल जी को। प्रेम रंजन पटेल जी अपना शुभ विचार थोड़े समय में समाप्त करेंगे और शुभ विचार रखेंगे।
ओम शांति। धन्यवाद संचालन कर रही अपना दीदी जी, अध्यक्ष इसके लक्ष्मी दीदी जी, मंच पर बैठे सूर्यकांत पलांडे जी, वीरेंद्र रघुवंशी जी, विनायक पाटिल जी, गंगाराम सौदागर जी, सरिता नारायण जी, राजेंद्र गहलोत जी जो सांसद राज्यसभा के पूर्व हैं, दंसारी अनसुईया जी, और यहां उपस्थित इस सभागार में सभी भाइयों, सभी बहनें और मित्रों, पिछले लगातार 3 दिनों से इसमें भाग ले रहा हूं, सभी सत्रों में भाग लिया हूं और पिछले कई वर्षों से मैं यहां आता हूं। कई बार ऐसी कोशिश होती है कि कुछ ऐसे ऐसे काम पड़ जाते हैं कि नहीं आ सकता हूं, लेकिन उसके बावजूद फिर जो है से बाबा का बुलावा आ जाता है तो वो सारे काम जो है से किनारे हो जाते हैं और यहां का काम प्रमुख हो जाता है। तो यहां आना होता है, आता हूं तो कुछ अपनी बात बताने के लिए नहीं, कुछ अपनी बात कहने के लिए नहीं आपके बीच में, यहां से कुछ ग्रहण करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, कुछ अपने मन के अंदर में, दिल के अंदर में लेकर कर करके जाने का। और यहां से जब प्राप्त होता है, कुछ प्राप्ति होती है, तो अपने आप को परिवर्तन करने का। यह अंतिम सत्र है और हम लोग की विदाई कह सकते हैं इसको, विदाई सत्र भी जो है से। अब आज का जो विषय है, अब ये राजनीतिज्ञों का सम्मेलन है, राजनीतिज्ञों में कैसे परिवर्तन लाया जाए, इसके लिए ब्रह्मा कुमारी की संस्थान के द्वारा जो लगातार प्रयास किया जा रहा है, यह अति सराहनीय है। राजनीति आज प्रदूषित हो गई है। अब राजनीति को हम दो भागों में अगर परिभाषित करें कि राजनीति को राज करने की नीति, जिसको कह सकते हैं, तो राज करने की जब नीति होती है तो वो जो ऐसे अहंकारी हो जाता है, लगता है कि हम ही सब कुछ उसमें प्रमुख हैं और सारे चीज मेरे अधीन है। लेकिन राजनीति का दूसरा जो है से आप आपको परिभाषित करें तो राज्य चलाने की नीति। जब राज्य चलाने की नीति अगर आती है होती है तो उसमें जो है से सब कुछ समाहित हो जाता है, कल्याणकारी नीतियां, परोपकारी, जनता के हित का बात, ये हर चीज उसमें समाहित हो जाता है। और लोकतंत्र में तो जो है से राज्य की को चलाने की नीति होती है। हम कह सकते हैं कि जो है से जनतंत्र सबसे मजबूत होता है और जनतंत्र की जननी भी हमारी ही देश रही है, वैशाली में सबसे पहले इस धरती पर अगर कहीं जनतंत्र की स्थापना हुई तो वैशाली में हुआ। मैं नालंदा जिले से आता हूं, पहली दुनिया के अंदर में कोई विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए स्थापित हुआ तो नालंदा का विश्वविद्यालय, जहां दुनिया के लोग आते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, वहां राजनीति से लेकर करके हर विषयों पर और वो सब चीजों की शिक्षा दी जाती थी, और वो भी एक राजा ही संचालित, राजा के द्वारा स्थापित किया गया, राजा के द्वारा संचालित किया गया था। और जिस प्रकार से वहां ये पहला जो है से वो विश्वविद्यालय भी था जहां प्रवेश के माध्यम से, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से वहां उसमें प्रवेश होता था, ऐसे किसी के दबाव या पैरवी पर वहां प्रवेश नहीं होता था। तो हम सकते हैं राजनीति में आज परिवर्तन की आवश्यकता है, राजनीति दूषित तो हो गया है। हम लोग जाते हैं अपने क्षेत्र में जब घूमने के लिए तो कई ऐसे जगह जो ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि हमारा बच्चा, हमारा बेटा ये किसी काम का नहीं है, ये न पढ़ाई करता है न कुछ काम धंधा करता है, इसको आप अपने साथ ले जाइए राजनीति में, यानी कि जो किसी काम का नहीं हो उसको राजनीति कहता है। तो इसलिए राजनीति आज प्रदूषित हो गया है। राजनीति तो सेवा भाव का माध्यम था, इसको हम लोग कहते थे, अब लोग जो है से इसको सेवा के रूप में लिया जाता था, लेकिन आज राजनीति का परिकल्पना बदल गई है, इसको मेवा के रूप में देखा कि राजनीति में चलो, कुछ पद प्राप्त करो, कुछ हासिल हो जाए, कुछ मिल जाए, उसका लाभ जो है से प्राप्त कर ले। लेकिन उसमें परिवर्तन लाने के लिए जो ब्रह्मा कुमारी जी ने जो आज इस आंदोलन को संचालित करने का काम किया है, लोगों को बुला कर करके यहां उनके मन के अंदर में जो अच्छाइयां हैं उन अच्छाइयों को उसको ग्रहण करने के लिए प्रेरित करने का काम किया जा रहा है, ये अपने आप में जो है से आने वाले समय में इसका लाभ जो है से निश्चित रूप में राजनीति में एक नए परिवर्तन के रूप में लेगा। केवल एक विषय पर मैं जो है केवल कि मैंने सुना था कि दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है, दुनिया धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो काश्मीर में है। मैं गया हूं काश्मीर, प्राकृतिक तौर पे अच्छी छटा अच्छा जो ऐसे देखने को मिलता है, लेकिन वो काश्मीर रक्त रंजित, उसको कैसे हम स्वर्ग कह सकते हैं। मैं उत्तराखंड में भी गया हूं और मैंने सुना कि जो ऐसे बद्रीनाथ से ऊपर माना एक गांव है जहां से स्वर्ग का रास्ता जाता है। पांडव द्रौपदी के साथ इसी के माध्यम से वो स्वर्ग के लिए जो ऐसे गए थे, बाकी सब लोग जो ऐसे रह गए, अकेला युधिष्ठिर गए थे, स्वर्ग गए थे, बाकी सब जो ऐसे रास्ते में रह गए, गिर गए, भटक गए। अब स्वर्ग तो हम लोगों ने देखा नहीं है, लेकिन जब ब्रह्मा कुमारी में आते हैं तो कहीं ना कहीं स्वर्ग की अनुभूति होती है। अपने आप में यह संस्थान जिस प्रकार से संचालित होता है, किसी प्रकार का कोई द्वेष भाव नहीं, किसी प्रकार का कुछ नहीं, और कैसे जो है से ये संस्था जो है से आज जो है से चल रहा है, और चल केवल नहीं रहा है, ये संस्था जो है से देश के अंदर में ही नहीं, दुनिया के अंदर में कई सारे देशों में यह संस्था स्थापित है और लोगों को परिवर्तित, उनके जीवन को परिवर्तित करने का काम कर रहा है। आज जब हम यहां आते हैं तो अपने मन को, अपने विचार को, अपने शरीर को, अपने आत्मा को, सबको यहां शुद्ध करने के लिए, और शुद्धता जो है से इसी में है कि यहां बताया जाता है परमात्मा से अपने आप को कनेक्शन कीजिए, जोड़िए, और यही जो है से काम ये ब्रह्मा कुमारी जी कर रहे हैं। तो परमात्मा के साथ जैसे ही जुड़ेंगे तो ये सारे चीज जो है से शरीर मन बुद्धि आत्मा ये सब जो है से आपका शुद्ध हो जाएगा, और वो शुद्धता से ही हम राजनीति को जो है से अपने जीवन को परिवर्तित करेंगे, और जीवन को परिवर्तित करेंगे तो राजनीति भी परिवर्तित होगा। इतना ही कह कर करके मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए और केवल कहता हूं कि यहां से जो ग्रहण करें उसको आप जो है से जन जन तक, लोगों तक फैलाएं, तभी जो है से यहां आने का हम सब लोगों का लाभ प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
प्रेम रंजन पटेल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आचार श्रेष्ठ होने से ही स्वर्ग का मार्ग खुल जाता है, इसलिए परमात्मा ईश्वरी विश्वविद्यालय में वही सिखाते हैं कि भ्रष्टाचार से श्रेष्ठाचार की ओर हम कैसे जाएं। तो अभी मैं तेलंगाना से आए हुए हमारे गंगाराम सौदागर जी से अपने शुभ विचार व्यक्त करने के लिए मैं आह्वान करती हूँ। आप तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में जो काम विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक रहे हैं, आप कई वर्ष पूर्व ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आए और संस्था की भूतपूर्व प्रमुख दादी प्रकाशमणि जी से प्रेरित होकर अपने व्यसनों का त्याग किया और ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में अपनाया। तैसे हमारे धारणा मूर्त गंगाराम सौदागर का स्वागत करते हैं अपने शुभ विचार व्यक्त करने के लिए।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज भगवान का आज्ञानुसार इस कार्यक्रम में आना पड़ा। आया था 2001 में इस मंच पे, ऐसो लक्ष्मी दीदी जी रंगनाथ भाई, हमारे तेलंगाना के मंत्री जी ने, हम सीतक्का बोलते वहां पे, सारे तेलंगाना आंध्र में सीतक्का बोलते आका को, रोहिसी हमारे क्षेत्र के माजी MLA हनुमान सिंधे जी भी आए हैं, ब्रह्मा कुमारी भैना राजनेता और जो आए हैं सो बड़े लोगों सारों को मैं नमस्कार करते हुए, मुझे हिंदी बराबर नहीं आता, 2001 में आने के बाद हिंदी थोड़ा थोड़ा सीख लिया, मुझे 2001 में मेरी पत्नी धर्मपत्नी सावित्री जी ने यहाँ जाने के लिए बताई थी। मैं बोला क्या जाना सावित्री, वो ब्रह्म कुमारी शादी नहीं करते और कुछ तो करते, क्या की करते, मैंने ऐसा था बोला। वो लगातार मुझे 6 महीने साथ लगा के यहाँ भिजवाए। मुझे यहाँ आने के बाद देखा 2001 में इतना ताजुब दिखा, 4 बार लोग तो MLA बनाए और लोग नेता 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 बोले, मैं नेता के नहीं भी नहीं समझा, MLA भी नहीं मालूम। और 6वीं क्लास पढ़ा, रोड पे बूट पॉलिश करता था। टाइम ऐसा आया 78 में इंदिरा जी के लहर में मुझे लोग MLA कर दिए। उसके बाद और 3 बार हुआ और मैंने हमारे धर्म पत्नी को बोला कह के लिए जाना, तू जो बुरे काम छोड़ दे, जुआ काम, जुआ नहीं खेलना, ये वो बताया। तो मैं बोला ये कहाँ छोड़ता हूँ, मैं नहीं छोड़ता हूँ। वो तिरुपति को गए थे हम लोग बीबी के साथ, तिरुपति को गए तो 1990 में चेयरमैन लिटकैप दिए थे मुझे पोस्ट है। वहां ने तिरुपति में सब दर्शन भीड़ बहुत रहता, कुंडी में पैसे डाल के दर्शन लेके आते, तो उनको गर्भगुड़ी में बुलाए वहां ब्रह्मन महाराज। गर्भगुड़ी में जाने के बाद बिचारी मुझे बता रही इतातर मराठी में, इतातर देवाजोड़ इमान देवाला पत्ते खेलना मन सांग अंदर, बरा सावित्री इता खेलना बोल। तो उन्होंने इतना तप रही थी बुरे चीजों को छोड़ने के लिए, बहुत ही मुझे तंग कर रही थी। मैं बोला अच्छा सावित्री यहां नहीं खेलता मैं, बोल के वहां सौगंध लिया। बाद में आने के बाद और जुआ खेलना शुरू करा वहीं तिरुपति में। नीचे आने के बाद वो बता रही ऐसा कैसा, अभी भगवान के सामने तिरुपति में ईमान खा रहा ना, वहां नहीं खेलता बोला सावित्री, यहां नहीं वहां भगवान के पास। ऐसा बहुत ही मैं उनको बिचारे को परेशान किया, रोज रोटी के लिए बूट पॉलिश करे, जब तो कुछ गलतियां नहीं किया, पर 4 बार MLA होने के बाद पैसा बन गया, गलती में फंस गया। इस लेवल से जा रहा था तो बिचारी यहां भिजवाई, यहां आया देखा, देखे तो एक एक बहन भाई के चेहरे, क्या चेहरे है, चमक चेहरे। हमारे को 3 बहन है, बेटी है, हमारे बहनों के बेटियों के चेहरे वहां देखे तो पेरन लवली पाउडर लगाते और साथ ही काला हो जाता। ये चमक चेहरे कैसे है यहाँ पे, ये क्या चीज है यहाँ। जैसा ट्रक में बैठ के हम बस में लारी में जाते हैं, ट्रक पे लिखा था बुरे नजर वाले तेरा मुंह काला। मैं बोला यहाँ हम इधर काले हैं तो यहाँ बहना गोरे है, और ऐसे कालेओं को गोरे बनाने के लिए यहाँ बुला के बताते हैं, ये समझ में मुझे आया यहाँ। और कुछ 3 दिन यहाँ ही बैठा, समझते गया। मेरा वो किस्मत था अकेला आया, अकेला आके अकेला बैठा, देखते गया समझते गया। अभी भी सारे ग्रेजुएट बड़े बड़े नेता बड़े ठहरे लाइन से, भाई साहब ने बता रहा था, क्या बता रहा था आप सब देखे, ऐसा करके ऐसा बताया, लाठ का ऐसा का ऐसा हो गया। इसका मतलब आ रहे अपन समझ रहे नहीं, अपना अपन कुछ तो कर रहे कुछ तो समझ रहे। अभी नेता तो देखो लोग का नेता बोलते, मैं नेता समझा ही नहीं। बाबा साहेब अंबेडकर के आशीर्वाद इंदिरा गांधी के हमें जीत गया, ये समझ में यहाँ आया मुझे। यहाँ परिवर्तन होने के लिए सच्चाई के जाने के लिए यहाँ बुलाते है बताते है, बल्कि ऐसा समझ में आया। आने के बाद 3 दिन में समझ ले लिया मैं, यहाँ बदल के जाना ही चाहिए, यहाँ बदलने का काम है, जो भी बुराई है यहाँ छोड़ने का काम है। ऐसा देखा तिरुपति शिरडी बहुत बार गया, कुछ नहीं हुआ। पर किस्मत वो था हमारे पास, एक शेखर महाराज पंडलपुर जाओ बोले, वहां जाने के बाद देखा वहां भी भगवान समान बने, तुकाराम महाराज हो, पुंडलिक हो, बड़े बड़े लोग, छत्रपति शिवाजी भी, क्या किया भाषण में बोलते पर अपन वो नहीं कर सक रहे। यहाँ पे वो करने के लिए भाई लोग भुला गए, और गांव गांव में बहन लोग इतना कोशिश करते एमएलए को, एमपी को, एमएलए को। मैं भी नया था तशान, एक जुता बोल के आया तो वो लक है। ये सारा देखने के बाद 3 दिन विचार चलते गया दिमाग में कि वो तो पढ़ा ही नहीं आता, दुनियादारी नहीं मालूम, और हमारी मिसेस को भी पढ़ा नहीं आता, कुछ भी नहीं मालूम, रोज रोटी को जिए। पर यहाँ आने के बाद इतना अच्छा दिखा मुझे, यहाँ बदल के जाना पड़ता। मुझे जुआ खेलने का शौक, 1980 में 1 लाख का सिंडिकेट खेलता था। जुआ खेलने के लिए मद्रास, बेंगलोर, बॉम्बई फ्लाइट में जाता था। एक मंत्री था, मंत्री के साथ सब मिलके ऐसे कामा करता था। बेचारे को क्या कि छोड़ना, इन्हें कहीं कोई एमएलए बना चप्पल दिए तो ठीक रहता था, समझ रही थी बेचारी। यहाँ बुलाने के बाद समझ गया और पक्का बन के ही जाऊंगा यहाँ मैं, कुछ भी हो। बल्कि दिल में आके दादी प्रकाश मणि, यहाँ पे जो फोटो है वो प्रकाश मणि दीदी ने दादी ने बताई, आ जाओ 3 नंबर हॉल को। उस टाइम पे सुशील कुमार शिंदे जी भी था, इस सारे नेता वहां गए। मैं बोला कहाँ जा रहे सब, दादी बुला रही, मैं भी गया। जाके वहां बैठा मैं सामने बैठे तो कुर्सी नहीं था, सामने ले जाके बैठा कुर्सी। दादी इतना नम्रता से, इतना प्रेम से, दादी हाथ नहीं आई तो भी इतना बता रही थी, आप नेता हो, भारत के प्रजा के सेवा करने वाले हो, भारत में सोने का पैसा था, चांदी का था, अभी कागज के करेंसी के नेता हो आप लोग। आप नेता 1 साल के लिए बुराई मत करो, गंदा काम मत करो, दारू मत पियो, सच्चाई से रहो। बोल के दादी इतना प्रेम से तब पे के बोल रही। तो दादी मैं बोला अभी कुछ भी हो ये टाइम अच्छा है, निर्णय लेना पड़ता बोल के। और दादी बोली पुलिस स्टाफ लगाओ, 1 साल पक्का करो, क्वेश्चन मार्क नहीं करना बोली दादी। अच्छा बोल के दादी ने बताई हाथ उठाओ, जो जो नेता पक्का करते। तो मैं हाथ उठा दिया, उस उठाए सो हाथ अभी तक नीचे नहीं किया, पक्का बन के जा रहा हूँ। और क्षेत्र में भी सेवा कर रहा हूँ, उससे पहले इतने बुराई थे बोलने के लिए बड़ा अच्छा रखता नहीं। और मैं मेरे भाइयों से टाइम नहीं ज्यादा लेते हुए अभी 75 टाइम्स मैं यहाँ पहुंचा हूँ माउंट आबू, और वैसे दूसरा किसी जगह नहीं जाता, अपना काम अपना व्यवहार से आगे बढ़ रहा हूँ। और मैं ये समझ रहा हूँ ज्यादा लिख पढ़ा नहीं तो भी मैं माउंट आबू से सिंध हैदराबाद से, हैदराबाद से बाबा का कुछ तो जॉइंट है समझ रहा हूँ। क्यों बोल तो चन्ना रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे, मैं एमएलए था, चंद्रबाबू नायडू भी एमएलए थे, और उस टाइम पे उन्होंने गवर्नर बन के 93 में पंजाब के आए, कुछ ना कुछ किए। मुझे ऐसा समझता चंद्रबाबू नायडू भी 40 एकड़ जमीन हैदराबाद गच्ची बोली में दिया है बाबू और चन्ना रेड्डी साहब। और वैसी आज हमारे तेलंगाना में, तेलंगाना अलग होने के बाद हमारे रेवंत रेड्डी साहब भी ओम शांति के बहना, ओम शांति का प्रोग्राम बोले तो इतना इच्छा है, इतना सच्चा है। उन्होंने भी आंध्र प्रदेश से जुदा होने के बाद अभी आप लोगों से आशीर्वाद से सीएम बना, उन्होंने भी ब्रह्म कुमारी के सेवा में लगातार रहना। और मेरे बहन सीताका को बता रहा हूँ इसके लिए कुछ करो। अभी अहमदाबाद में फ्लाइट परसों गिरा, सबको मालूम है क्या हुआ, अकेला जिंदा आया, ये सब भगवान का काम है। और अपन समझना चाहिए यहाँ बदल के जाने के लिए, यहाँ कोई पार्टी बदलो मट्टी बदलो कैके पार्टियां बदलते, क्या हो रहा, किधर जा रहे, किधर घूम रहे, समझ में नहीं आता। अगर डॉक्टर बताता ये दवा लेना बोल के बताएगा, अगर दवा नहीं लेंगे तो कैसा बीमारी कम होएगा। समझने के लिए कोशिश करो, सच्चाई की जाने के लिए कोशिश करो। सच्चाई मैं तो हमारे सावित्री बहन को बोलता हूँ, माँ जन्म देती, बहन राखी बांधती, बीबी कर्म के लिए आती। मैं तो ये समझ के उनको भगवान करके चढ़ता हूँ। सावित्री बहन को मैं बीबी जी नहीं माँ के समान करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और कोई कुछ भी बोलते, भी नेता हूँ, चार बार नेता बना है, अरे कहकर ओम शांति लगाया बंद कर दे जीतता, अरे वहां जीत गया मैं, माउंट आबू में जीत के यहाँ को आया बोल के बताता हूँ भाई। समझो थोड़ा, सच्चाई का काम करो। अभी बुराई बहुत नजदीक आया है, कलयुग का अंत भी है, आरंभ भी नहीं है। बाबा ने बता रहा मुरली में, कभी मुरली भी मैं मिस नहीं किया। अभी बताना दादी प्रकाशमणि हाथ उठाया जब से, मुरली भी मिस नहीं किया। और गंदे काम हर कुछ बंद करके सच्चाई में जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, मेरे में जितना गलती था कितना गलत था, यहाँ पे ऐसो भाइयों में किसी में नहीं है। ऐसा आदमी एक सेकंड में बंद कर सका। आप पहले सोचो, समझो, समझ के आगे बढ़ो और मेरे जैसा हो जाओ। ओम शांति।
सच्चाई, सादगी और सफाई की प्रतिमूर्ति हमारी प्रकाशमणि दादी जी के पदचिन्हों पर उनकी पालना लेने वाले ही बहुत धन्य हुए और अपने भाग्य बगा के बनाते हुए, अपनी जीवन से दूसरों को भी प्रेरणा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो अपने स्व परिवर्तन से, जो विश्व परिवर्तन का इसी विश्वविद्यालय का जो श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाते हुए, उसका प्रैक्टिकल स्वरूप जो गंगाराम सौदागर भाई जी हैं, उनको मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करती हूँ। और अभी हमारे बीच में सरिता नारायण जी हैं, रोहतक से पूर्व विधायक। उनसे मैं अनुरोध करती हूँ कि वो अपना शुभ विचार प्रस्तुत करें। सरिता नारायण हरियाणा के विधानसभा की पूर्व सदस्य हैं, वर्ष 2000 से 2005 तक भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में करनौल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। उनसे मैं अनुरोध करती हूं कि वो अपना शुभ विचार रखें।
आज हम स्वर्ग में बैठे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और सच बताएं तो हम चार दिन के लिए आए थे और अब यहां से जाने को भी मन नहीं कर रहा है। ओम शांति, ओम शांति। मेरे से पहले भी पूर्व वक्ताओं ने अपने इस राजनीतिक मंच से अपने अपने अनुभव, अपने अपने विचार रखे, सबने अपने विचार साझा किए। और मुझे भी यहां इस मंच पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानती हूं कि मुझे एक छोटी सी नाटी चीज को, जो यहां पर इतना बड़ा जो आपने मान सम्मान दिया है, मैं आपकी बहुत आभारी हूं, ऋणी हूं कि मुझे यहां पर आने का मौका मिला। हमारे बीच में मंच पे विराजमान हमारे बीच में हमारे पूर्व विधायक सूर्यकांत पलांडे जी, श्री वीरेंद्र रघुवंशी जी, विनायक पाटिल जी, प्रेम रंजन पटेल जी, गंगाराम सौदागर जी, राजेंद्र गहलोत जी, श्रीमती दंसारी अनसुईया जी, श्री बी के रंगनाथ जी, और आज की अध्यक्षता कर रही हमारे लक्ष्मी दीदी जी। आज जैसा जो राजनीति में भी है कि निस्वार्थ भावना से हम त्याग और समर्पण और भाव के साथ काम करते हैं, उसी तरह ब्रह्म कुमारीज में भी मैंने देखा कि ये बिल्कुल, हम तीन दिन से इनकी सेवा में हैं, जिस तरह से ये सेवा भाव और समर्पण के साथ आज हम सब आने वाले जो यहाँ पर प्रतिभूति आई हैं, उनका बड़ा ध्यान से उनको, और मैं बहनों को भी देख रही हूँ कि बहनें व्यवस्था इतनी बढ़िया व्यवस्था है कि इतने सारे यहाँ पर सज्जन और बहनें आई हैं, तो उनकी व्यवस्था में आप देखें कि एक एक व्यक्ति के लिए वो उनकी सेवा में खड़े हैं। और यहां पर बाहरी स्वच्छता ही नहीं, अंतर आत्मा की स्वच्छता का भी यहां पर हमें ज्ञान मिलता है। यहां पर निस्वार्थ सेवा भाव और त्याग और आध्यात्मिक समर्पण के साथ और शांत, और मैंने देखा कि अपनी ब्रह्म कुमारी दीदी हैं, इतना मधुर स्वभाव, शांत स्वभाव, और इनके चेहरे पर हर समय मुस्कान, हर समय मुस्कुराती रहती हैं, इतना बढ़िया लगता है कि अगर हम लोग यहां पर अगर बैठे रहे और उनके सामने बैठे तो दिव्य ज्योति हमें उनके अंदर नजर आती है। क्योंकि जिस तरह से ये अपना आत्मज्ञान हम लोगों के लिए और हमें आगे चलने की, आगे देखने की, आगे बढ़ने की जो प्रेरणा हमें मिलती है एक शुद्ध आत्मा के साथ, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा अनुभव है। यहां पर सकारात्मक हमें ऊर्जा मिलती है, हमें यहां पर दिव्य ज्योति का भी ज्ञान होता है, और हमें बड़ा अच्छा लगता है कि आपके अथक प्रयासों से जिस तरह से आपने पूरे भारत के अंदर अपने सेंटर के माध्यम से हर जिले के अंदर, हर प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में आप लोगों के काम की सराहना करते हुए, आपके अथक प्रयासों को देखते हुए भारत सरकार ने भी विभिन्न मंत्रालयों में भी आपको स्वच्छता अभियान, नशा मुक्ति भारत अभियान, घर घर बने स्वर्ग, प्रकृति माँ का सम्मान जैसे बड़े अनेकों प्रोजेक्ट में ब्रह्म कुमारीज को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और मैं रोहतक के अंदर भी, हमारा सेंटर है आर्यानगर में, वहां उमा दीदी हैं, उनके साथ भी मुझे काम करने का बड़ा मौका मिला। मैं अपनी पार्टी के साथ, अपने पदाधिकारियों के साथ भी, उनके साथ उनके नेतृत्व में मुझे भी काम करने का बड़ा सौभाग्य मिला। और लगभग हमने सभी प्रदेशों में उनके साथ हर सफल प्रोग्रामों में हमने उनके साथ काम किया है, और उन्होंने मुझे कई बार निमंत्रण दिया कि आप एक बार हमारे साथ चलें और आप देखिए कि आप वहां पर बड़ा अच्छा अनुभव और बड़ा अच्छा आप वहां पर एक सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएंगे। तो मैं 10 साल पहले यहां पर आई थी, तो तब मैं, उसके बाद मेरा आना नहीं हुआ, लेकिन अब मैंने उमा दीदी, उन्होंने कहा तो हमारी कुछ बहनें हमारे साथ यहां पर आई हैं, और मैं आगे भी कोशिश करूंगी कि मैं आप अपनी बहनों के साथ यहां पर मैं फिर से और बार बार आने के लिए मैं यहां पर कोशिश करूंगी कि मैं बार बार आऊं और आपके दिव्य ज्ञान के साथ मैं आगे बढ़ूं और अपने अंदर आत्मज्ञान करूं। और मैं आपको आश्वासन भी दिलाती हूं कि मैं बड़े स्तर पर बड़े प्रोग्राम भी मैं अपने करूंगी, और मैं अपने सेंटर, अपनी बहनों के साथ, अपनी उमा दीदी के साथ, अपनी ब्रह्म कुमारी के साथ मुझे काम करने का मौका भी मिला है, और मैं आगे आपको आश्वासन दिलाती हूं कि मुझे जब भी मौका मिलेगा तो मैं यहां पर आकर मैं आप लोगों की शरण में, और मैं इस आपके विचारों को अपने अंदर समायोजित करने की कोशिश करूंगी। मैं एक छोटी सी कहानी बताती हूं कि मोमबत्ती थी और एक कमरे में बड़ी मोमबत्ती, सुंदर मोमबत्तियां थी। वो उनको अपने आप में था कि मोमबत्ती हम बड़ी सुंदर और हम प्रकाश करती हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें डर भी लगता था कि हवा के झोंके से कहीं हम बुझ ना जाएं, तो वो उन्हें बड़ा हर समय डर लगा रहता था। लेकिन वहीं पर एक कमरे में, वहीं पर एक छोटा सा दिया जला, और वो दिए को देखकर सारी मोमबत्तियां हंसने लगी, कहने लगी कि तू तो मिट्टी का दिया है और तेरे अंदर तो तू क्या कर सकता है, हमें देखिए कि हम तो इस प्रकाश से इतनी रोशनी करते हैं, और हमें खूबसूरत मोमबत्तियों को देखकर हर कोई उस मोमबत्तियों को देखने की लालसा रखता है। लेकिन दीपक बड़ा मुस्कुराया और उस दीपक ने कहा कि कोई नहीं, तुम तो अभी भी हवा के झोंके से तुम डर रही हो कि कभी भी हवा का झोंका आएगा और तुम उसमें बुझ सकती हूँ, लेकिन मैं एक दिया हूँ और मैं उस दिए को आज अपने आत्मज्ञान से, मैं उस दिए के साथ मैं उस दिए के साथ, मैं उस हवा से भी नहीं डरता हूँ, क्योंकि मैं अडिग हूँ। मैं वहां पर बिल्कुल अपने अडिग और अपने इरादों के साथ यहाँ पर मैं डटा हुआ हूँ। तो इतनी देर में एक झोंका आया और इतनी खूबसूरत मोमबत्तियां वहां पर बुझ गई और दिया अपनी रोशनी हमारे बीच में, उस रोशनी प्रकाश से उस कमरे को उजाला करता रहा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें मोमबत्ती की तरह नहीं, हमें दिए की तरह उन अपने इन सेंटर्स में आकर उस दिव्य रोशनी की तरफ हमें वहां पर आगे बढ़ना चाहिए, वो दिव्य रोशनी के अंदर अपने अंदर आत्मसात करना चाहिए। और हमें यहां पर आकर उस अपने इस सेंटर के अंदर आकर और हमें हम इन लोगों की शरण में आकर और हमें अपने आप को एक अच्छे शुद्ध वातावरण के साथ, शांत वातावरण के साथ, अंदर हमें आत्मज्ञान के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती सरिता नारायण जी का। तो ऐसे ही अपने आत्मा का दीपक को जगाते रहे और आते रहे अपने घर में, इस स्वर्ग में। इस विचारों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में राज्यसभा के पूर्व सांसद श्री राजेंद्र गहलोत जी हैं। राजेंद्र गहलोत जी भारतीय जननीतिज्ञ तथा राजस्थान से राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। वे राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री हैं और राजस्थान विधानसभा में सरदारपुर से विधायक थे, तो भारतीय जनता पार्टी के राजनेता हैं। मैं गहलोत जी से अनुरोध करती हूं कि वे अपना शुभ विचार इस संपन्न समारोह का अभिव्यक्त करें।
ओम शांति। आज के इस राजनीतिज्ञों के सम्मेलन के समापन के अवसर पर, आज के इस समारोह की अध्यक्ष परम श्रद्धेय बीके लक्ष्मी जी और मंच पर विराजमान सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण, सभागार में उपस्थित सभी राजस्थान से भारत से आए हुए प्रतिनिधियों का मैं अभिनंदन सम्मान करता हूं। भाइयों और बहनों, विषय राजनीति से जुड़ा हुआ है। जिस संस्था ने ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संस्था के विषय में हम ये कह सकते हैं, ये एक पवित्र काम है और जिस समर्पण के साथ मानवता की सेवा में ये लगे हुए हैं, उसके लिए नैतिक और आचरण और सद्भाव और जीवन की शुद्धता के कारण संस्था की ओर आम व्यक्ति का आकर्षण होता है। एक विश्वास पैदा होता है कि हम जिस स्थान पे गए हैं, वहां जिस उद्देश्य के लिए वो काम कर रहे हैं और जिसके लिए आम जन में उस पवित्रता की ज्योत जगा रहे हैं, इसलिए हम सबका एक विश्वास उस संस्था के प्रति बकता है। देश में इसी तरह है, देश की आजादी के समय देश में एक उद्देश्य था, देश आजाद हो, और आजादी के लिए देश में संघर्ष हुआ। देश की आजादी के लिए हम सब जब आजाद हो गए तो आजाद के साथ इस देश में अनेकों विचारधाराओं की, अनेकों राजनीतिक पार्टियां खड़ी हो गई। समय के साथ वो टूटती भी गई, बिखरती भी गई। कोई क्षेत्रीय पार्टियां थी, उनका क्षेत्रीय तक उनका उद्देश्य था। कोई वंशवादी पार्टियां थी, वो पार्टी वंश के आधार पर, परिवार के आधार पर चलती थी। कुछ पार्टी राष्ट्रीय पार्टियां थी, जिनका राष्ट्रीय उद्देश्य था देश, और उस उद्देश्य के आधार पर वह धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ती थी। उसमें हमने देखा है कई पार्टी टूटी, कई बुरी, और जो विचारधाराओं के प्रति समर्पित रहे, मजबूती के साथ, संकल्प के साथ अपने राजनीतिक कार्यक्रम को लेकर जनता के बीच में अपना प्रचार विस्तार करते रहे, आज वो इस देश में टिके हुए हैं। जिस तरह हम इस आज की संस्था में बैठे हैं, इसका जो उद्देश्य हम देख सकते हैं कि सूर्य की जो गति है, सूर्य समय पर उदय होगा और उसके बाद समय पर अस्त होगा, उसी तरह आज सारे देश में नहीं, अपने देश में नहीं, विश्व में आज ब्रह्म कुमारी संस्था पर लोगों का एक विश्वास है। इसी तरह राजनीतिक क्षेत्र में भी विचारधाराओं के आधार पर लोगों की कितनी प्रतिबद्धता है, कितना उनका मजबूत संकल्प है कि उनका विचार राजनीतिक कार्यक्रम क्या है, और कार्यक्रम के आधार पर किसी मजबूती के साथ वो इस जनता के हितों के लिए संघर्ष कर सकते हैं, और उन संघर्षों के कारण जो आगे राजनीतिक दल बढ़ता है उसमें नैतिकता हो, उसमें संवेदनशीलता हो, उसमें सेवा हो, और सेवा के कार्यक्रम के साथ यदि जो जनता के बीच में काम करेगा वो राजनीतिक दल हमें इस देश में चाहिए। और ऐसे राजनीतिक दल होने के कारण हमने देखा होगा देश आजाद हुआ 1947 को, और उसके भी 27 वर्ष बाद देश में इमरजेंसी लग गई। निजी स्वार्थ के लिए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी और देश में पूरे देश को कैद खाना बना दिया। देश में जिस तरह के हालात पैदा हो गए उसमें भी लोगों ने संघर्ष करके वापस लोकतंत्र की स्थापना की। लोगों में एक विश्वास पैदा हुआ कि हमें लोकतांत्रिक देश है, हमें लोकतंत्र के हिसाब से हमें रहना चाहिए, उसके लिए हमको संघर्ष करना चाहिए, लोकतंत्र की पुनर्स्थापना होनी चाहिए। लगातार जिस तरह मैं कह सकता हूं कि ब्रह्म कुमारी संस्था है, उसी तरह देश के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जो विचारधारा के आधार पर इस देश में एक वैचारिक क्रांति के आधार पर उन्होंने कबड्डी में इस देश का शासन बदल दिया, देश की दिशा और दशा बदल दी। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि सत्ता राजनीतिक दलों में नैतिकता, सेवा और उसमें आध्यात्मिकता होना आवश्यक है। उस आध्यात्मिकता के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारी देश की जो संस्कृति और हमारी विरासत है, और विरासत के आधार पर देश की सुविधा के लिए देश में नवाचार और विकास हो, और विकास के साथ देश के नेता ईमानदारी से हो। अभी मेरे कोई बंधु कह रहे थे कि आजकल विधायक सांसद अपने दल बदल की ओर जल्दी भगते हैं, तो उसके लिए हमें परीक्षण करना पड़ेगा कि उनकी वैचारिक धरातल क्या है। उनका वैचारिक धरातल इतना ही है कि उतना अपना स्वार्थ, और स्वार्थ को यदि हम एक्सपोज नहीं करेंगे, उस स्वार्थ को जनता के बीच में लाके नहीं बताएंगे किस तरह के नेताओं के अंदर जिस तरह का है, उससे हमें पहचानने की आवश्यकता होनी चाहिए। इसके लिए आज राजनीतिक जो सम्मेलन हर वर्ष जो ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा किया जा रहा है, ये वास्तव में देश में एक नई विचार को लेकर, जनता में एक नए उद्देश्य को लेकर, जनता में हम इस तरह की बात को फैलाएं कि देश के हित में, देश और समाज के हित में और जन के हित में जो काम करने वाले राजनेता है, उन राजनेताओं को जनता को पहचानना चाहिए और पहचान के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मैं इस संस्था से लंबे समय से परिचित हूँ। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि सदे पहली जो प्रथम हमारी दादी थी उनके दर्शन करने का मुझे अवसर मिला। मैं विधायक था, मुझे जानकारी नहीं थी कि ब्रह्म कुमारी संस्था क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, वहाँ के लोगों का व्यवहार क्या है। इस कारण मैंने विधानसभा के अंदर, क्योंकि बड़े युवा थे, जोश था, तो विधानसभा में मैंने इसका डट के विरोध किया कि हमारी वन खत्म हो रहे हैं, जंगल खत्म हो रहे हैं, हमारे यहाँ वन क्षेत्र के अंदर इतने बड़े बड़े भवन बन रहे हैं, इन पे रोक लगनी चाहिए। और उसके बाद जिस दिन मैं विधानसभा में बोला, उसके दूसरे दिन ही माननीय अटल जी का कार्यक्रम इसी संस्थान में था, और इस विश्वविद्यालय में कार्यक्रम होने के साथ मुझे भी आना पड़ा। तो पत्रकारों ने जो अटल जी से पूछा कि आपके विधायक विधानसभा में वाली हंगामा हुआ था और आप यहाँ इस संस्था में आए हो, तो उन्होंने कहा जो विधायक और जिन्होंने हंगामा किया है उन्हें इस संस्था को न जाना होगा, न इस संस्था के कार्यक्रम देखे होंगे, न यहाँ से किसी के संपर्क में रहे होंगे, न उनकी विचारधारा का अध्ययन किया होगा। बिना विचार के, बिना संस्था के अध्ययन किए कोई बोलता है उसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ जिस तरह सूर्य अपनी ऊर्जा देता है उसी तरह ब्रह्म कुमारी संस्था आम लोगों को अपनी ऊर्जा के माध्यम से अपनी स्वच्छता और सच्चाई के माध्यम से आज जनता के बीच में मानवता के लिए काम कर रही है। और इसलिए मेरा भी ये सोचना है यदि ब्रह्म कुमारी इस देश के अंदर विश्व में काम नहीं करती तो हमारे भी इस देश के अंदर, इस आदिवासी क्षेत्र के अंदर वो खाली स्थान नहीं रहता। उस स्थान पर दूसरे कोई काम करते, चाहे ईसाई मशीनरी काम करती या और कोई काम करता, उससे जिस लोगों में जो नैतिकता का और जो उसकी सच्चाई का, आध्यात्मिकता का जो प्रचार प्रसार और उनको जीवन को बदलने का काम इन संस्था द्वारा इस आदिवासी क्षेत्र में हुआ वो नहीं होता। उसमें हमें आज इसके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि आज के इस सम्मेलन के माध्यम से और राजनेताओं के माध्यम से हमें इस बात की भी चिंता करनी चाहिए। राजनीति सत्ता के लिए, सत्ता राज्य कार्य के अंदर विकास के कार्यों के साथ ईमानदारी होनी चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त शासन हो, और उसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक हम इन संपर्क में आते हैं, जहाँ जहाँ हम संस्था के संपर्क में आए हुए व्यक्ति हैं, यदि उसी बात को, उसी उद्देश्य को लेकर आम राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच में हम काम करेंगे तो अवश्य इस बात को हम ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे। पहुंचा पाने बाद राजनीति में जो सेवा, निष्ठा और जो अपने समर्पण होना चाहिए उस आधार पर हम काम कर पाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं बड़ा अपना आपको सौभाग्यशाली मानता हूँ कि यहाँ के इस सम्मेलन के माध्यम से हम जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम काम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। इस संस्था के जो उद्देश्य है उसके माध्यम से हम सबको मिलकर इस संदेश सारे विश्व में पहुंचाना है। जिस तरह आज जो राजनीति के अंदर जिस तरह की कमियां आ गई है, उन राजनेताओं को एक नई दिशा देने का काम, देश की दशा और दिशा बदलने का काम हम लोग सब मिलकर करेंगे। इसी संकल्प के साथ हम इस सम्मेलन से जब विदा हों, इस उद्देश्य के साथ विदा हों कि देश की जो राजनीतिक वातावरण है उस वातावरण को बदलने का एक काम हम सब मिलकर करेंगे। आज के अवसर पर मैं हमारे मित्र जिन्होंने मुझे आने के लिए प्रेरित किया, मैं उनके अटल बिहारी सिंह जी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने पिछले अधिवेशन में भी मुझे बुलाया और लगातार वो दिल्ली में हमारे संपर्क में रहते हैं। उन्होंने यहाँ बुलाकर जिस तरह का, जिस उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम आए हैं उसकी उस संकल्प को हम पूरा करें। जिस तरह हमारे मोदी जी कहते हैं विकसित भारत का जो संकल्प है, हमारे देश के अंदर सब इस मजबूती के साथ मजबूत विचारों के साथ खड़े होकर देश को आगे बढ़ा सकें, हमारी नैतिकता, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा सकें, हमारी विरासत को आगे बढ़ा सकें, इस बात को संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।
आप सभी महानुभवों के प्रेरक वक्ता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सभी को एक विशेष और एक सरप्राइज है। हमारे बीच में उषा दीदी पहुंचे हैं आप सभी के लिए अपने शुभ विचार व्यक्त करने के लिए। मैं बहुत बहुत तहे दिल से दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करती हूं।
ओम शांति। आप सभी मंच पर आसीन विशेष प्रभु रत्न है, मैं यही कहूंगी। और ऐसे प्रभु रत्न जो आज अपने विचार हम सभी के सन्मुख रख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिवादन है। तथा सभा में उपस्थित सभी प्यारे भाइयों बहनों जो इस कॉन्फ्रेंस में विशेष रुचि लेकर के आप आए हो और अपना योगदान दिया अपनी सहभागिता से, तो आप सबका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिवादन है, अभिनंदन है। 3 दिवसीय इस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई, बातें हुई, लेकिन हम यही कहेंगे कि ये चर्चा सिर्फ यहाँ तक न रहे। अब आगे क्या करना है आप सभी अनुभवी है, इसलिए यहाँ से जाने के बाद हम यही कहेंगे कि अपने जीवन के अंदर इस ऊर्जा को आप नित्य प्राप्त करते रहो। तो उसके लिए जो हमारे सेंटर्स है, जिस सेंटर्स के माध्यम से आप यहाँ आए हैं, तो वो सेंटर्स पर जरूर हफ्ते में एक दिन तो जरूर जाना ही है। ज्यादा जा सको तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम हफ्ते में एक बार तो जरूर जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि सारा दिन आप लोगों को एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में कार्य करना पड़ता है। दुनिया में चारों ओर नकारात्मकता बहुत है और उस नकारात्मकता के कारण ही कई लोग जब हमारे पास आते हैं तो हमारी शक्ति को भी डिप्लीट कर देते हैं। तो बाबा के घर में जब जाते हैं, भले 5 मिनट के लिए क्यों ना जाओ, लेकिन वहां जाने के बाद आपको जो एक सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, जैसे यहां आए हैं आप, ये अवश्य महसूस किया होगा जब आए तब कि एक अलग दुनिया में आ गए। जबकि यहां कोई 5-स्टार होटल जैसी सुविधाएं नहीं है आपके कमरे में, कमरे में और लोग भी शायद रहे हैं, लेकिन फिर भी आते ही ऐसा महसूस हुआ कि एक अलग दुनिया में आ गए। तो ऐसी क्या बात थी इस दुनिया के अंदर जो आपने महसूस किया, यही कहेंगे कि सकारात्मक ऊर्जा को जो आपने महसूस किया, एक ऐसी आत्मा में ताकत भर गई जैसे कि बैटरी चार्ज हो गई। तो इसलिए यहां से जाने के बाद अब बीच बीच में अवश्य जाते रहे ताकि आपकी बैटरी चार्ज होती रहे। और फिर साल में एक बार हमारी कॉन्फ्रेंस यहां होती ही है, यहां भी जरूर आए, लेकिन अकेले नहीं आए, औरों को लेकर के भी आए, ठीक है ना? तो इसीलिए हम कहते हैं यहां की फी है, आए हैं तो फी तो देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। यहां की फी है 3 आना। पहला आना है सेंटर पर हफ्ते में एक बार जरूर आना, दूसरा आना साल में एक बार यहां जरूर आना, और तीसरा आना जब भी आओ तो किसी न किसी को लेकर आना। ये 3 आना जरूर देना है और ये 3 आना देकर के आप अपने जीवन के अंदर वो पुण्य की पूंजी एकत्रित कर सकते हैं जो पुण्य की पूंजी बहुत भाग्य से प्राप्त होती है। आपने आगे के सत्र में भी देखा कि आज की दुनिया में सबसे बड़ी पूंजी है तो दुआओं की पूंजी है, पुण्य की पूंजी है। जीवन के अंदर अगर नकारात्मकता को कोई काट सकता है, ऐसा तोड़ अगर है, तो वो है हमारी सकारात्मक ऊर्जा, हमारे पास प्राप्त दुआएं और हमारे पास प्राप्त पुण्य की पूंजी, यही उसको काट सकती है और जीवन को आसान बना सकती है, सहज कर सकती है। तो इसीलिए आप सभी ने यहां से जो कुछ भी पाया है उसका आप अवश्य प्रयोग करते रहेंगे अपने जीवन के अंदर और दूसरों को भी प्रेरणा देते रहेंगे, यही हमारे दिल की शुभ भावना, शुभकामना आप सबके प्रति है। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद है आप सभी यहाँ पधारे बाबा के घर में, और इस वायुमंडल को भी आपने अपनी ऊर्जा से और शक्ति प्रदान की, तो आपको खुशी अवश्य प्राप्त हुई होगी, आपको शक्ति भी मिली होगी। यही हम दिल से आपके प्रति दुआएं भी अर्पित करते हैं, शुभ भावना शुभकामना अर्पित करते हैं, और इस कॉन्फ्रेंस को सफल बनाने में आप सभी का जो योगदान है उसके लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।
दीदी का बहुत 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 कोटि कोटि अभिनंदन है सबको, सबसे मिलने के लिए वो का समय निकल कर आए और आपसे तीन आना लिए। मैं भरोसा करती हूँ, दिलाती हूँ कि दीदी को कि आप सब तीन आना तो जरूर देंगे ही देंगे, देंगे ना, जो देंगे हाथ उठाए, अच्छा है। तो अभी अब समय है एक प्रशासनिक और राजनैतिक जीवन के व्यवहारिक अनुभवों को सुनने का। मैं बहुत आदर के साथ तेलंगाना सरकार की पंचायत राज एवं ग्राम विकास मंत्री सीतक्का को आमंत्रित करती हूँ। तो सीतक्का तेलंगाना सरकार में ग्राम विकास, जलपूर्ति तथा महिला एवं बाल कल्याण विभागों की कैबिनेट मंत्री हैं। वह तेलंगाना विधानसभा में मुलुंग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मैं सीतक्का से अनुरोध करती हूँ कि वे अपना इस तीन दिन का अनुभव साझा करें।
ओम शांति, ओम शांति। थोड़ा हिंदी मुश्किल है मगर आई विल ट्राई टू डिलीवर माय एक्सपीरियंस। मंच पर हमारा टुडेज प्रेसिडेंट प्रेसिडिंग लक्ष्मी दीदी एंड अक्रॉस अवर एमएलएस, एक्स एमएलएस एंड ऑन द डायस ऑफ द डायस पॉलिटिकल लीडर्स, हमारा ओम शांति। हमारा गंगाधर का नाम, अभी तक उनका नाम गंगाधर है ऐसा मालूम नहीं है, मेरा साथी है एमएलए, सीनियर एमएलए, मगर हम कहते हैं उनको ओम शांति ओम शांति। उनका ओरिजिनल नेम ओम शांति है ऐसा मालूम है, पुराना अभी गंगाधर भैया मालूम है। हमारा दूसरा एक्स एमएलए मेरा साथी शिंदे जी निजामबाद से आया, सबको ओम शांति। दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विथ अवर ब्रह्म कुमारी से। मैं कभी भी नहीं आया इधर तक, आज आया हूँ। इस आने के लिए हमारा तेलंगाना ब्रह्म कुमारी ओम शांति सरोवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो इतना तक लाया मुझको। ये तीन दिन में अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, अच्छा वर्ड्स लर्न सीखा. आई एम टेकिंग गुड वर्ड्स फॉर व्हाट इज गॉड. सब जनता बाहर एक एक आदमी एक एक ट्रस्ट कर रहे, बिलीव कर रहे, मगर इधर मैं आज सीखा पॉइंट ऑफ लाइट. वो खुद आपका मन में है, गॉड दूर नहीं है. कोई अच्छा काम कर रहे वो उनके साथ गॉड रहता. ये मैं थोड़ा सीखा इधर आने के बाद. बहुत स्पिरिचुअलिटी भी हमको आ रहे, अच्छा शांति मिल रहे. पहले हमारा तेलंगाना ब्रह्म कुमारी दीदी भैया ब्रदर्स बोला वो पॉलिटिकल लीडर्स के लिए स्ट्रेस बार अवॉइड करने के लिए हम कर रहे. अब आना 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 बहुत टाइम वो रिक्वेस्ट किया, बहुत टाइम वो फोर्स भी किया, मगर इतना दिन मेरा कंसिस्टेंसी, मेरा पोर्टफोलियो स्टेट लेफ्ट छोड़ने के इधर रहना बहुत मुश्किल है ऐसा सोचा. मगर 3 days आई वॉज स्पेंड हियर. अच्छा सब आपके साथ एंड क्लासेस भी अच्छा दे रहे हैं. हम खुद अच्छा मन है तो अच्छा फ्री स्ट्रेस हो तो काम भी अच्छा करेंगे, जनता के लिए भी गुड काम भी करेंगे. मैं थोड़ा कभी कभी गुस्सा भी आते हैं, पूरा दिन जनता के साथ रहता हूँ, इसलिए इधर आने के बाद मैं थोड़ा नहीं नहीं ऐसा नहीं करना. वो आदमी आते हैं उनका प्रॉब्लम बोलते हैं, मगर उनके शांति से ओम शांति से ऐसा स्वीकार करना, अच्छे करना उन लोगों को, ऐसा भी मैं सीखा इधर से. मैं पहले तो मेरा जीवन दूसरा है, क्वाइट अपोजिट गॉड. मैं गॉड नहीं मानता हूँ. मैं नक्सलेट में काम करने समय में थोड़ा 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 बिलीव कर रहा हूँ, मगर अभी तो साइंटिफिकल एंड इनर फीलिंग जोड़कर इधर मैं सीखा. सो अच्छा मौका मिला ये आने के बाद. इधर सबके सब बोल रहे हैं कौन है बड़े देव, बड़े देव. इधर मैं सीखा बड़े देव इंटरनल से पॉइंट ऑफ लाइट. वो लाइट शिवा का साथ है. हमारा आदिवासी लोग भी बड़े देव को हम प्रेयर हमारा लोकल गॉड से प्रेयर करते हैं, मगर रिसेंटली हम एक टेंपल बनाया मेरा क्षेत्र में. हमारा सीएम रेवंत रेड्डी वो भी उधर सेंटिमेंटल से इलेक्शन के पहले वो पैदल यात्रा किया मेरा क्षेत्र से. आफ्टर हम जिताया गवर्नमेंट फॉर्म किया, इसके साथ उधर एक ट्राइबल फेस्टिवल का समक्का सार का वो तो वो लोग लेडीज से फाइट किया, मगर हमारा कम्युनिटी उनको गार्ड बनाया. उनको फादर्स वो शिवा को पूजा किया. रिसेंटली हमको वो मालूम हो गया शिवा तो पूर डिफरेंट है. हम आदिवासी को नेचर बिलीवर्स हैं ऐसा है, मगर हमारा पूर्वी भी वो शिवा को पूजा किया. इधर मुझको अच्छा लगा यहाँ से ब्रह्म कुमारी से शिवा को, राम भी शिवा को पूजा किया. सब पहले शिवा, वो शिवा बोलो तो पॉइंट ऑफ लाइट. यही इधर हमको समझ हो गया ये निरंकार अहंकार नहीं है. सेवा सेवा में कुछ ईगो सेल्फिश वो पूरा छोड़ना वो भी अच्छा सेवा है. ये मुझको थोड़ा है, मगर पूरा अभी स्पिरिचुअलिटी से सेवा कैसा करना वो भी हम इधर यहाँ से मालूम हो गया. आने वाले दिन में हम मेरा ग्रामीण विकास मंत्री हूँ, रूरल डेवलपमेंट, रूरल वाटर सप्लाई, रूरल ग्रामीण विकास. हम तेलंगाना केंद्रीय ब्रह्म कुमारी सेंटर से हम मिलकर आने वाला दिन में गांवों के अच्छे अवेयरनेस देने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए मिलकर काम करेंगे. पहले एक दिन मैं गच्चीबोली सेंटर गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आया हमारा स्टेट, उनका प्रोटोकॉल मेरा जिम्मेदारी दिया हमारा गवर्नमेंट, उनके साथ साथ हमारा गच्चीबोली सेंटर गया, उधर सब ब्रह्मा कुमारी पूरा एक्टिविटीज थोड़ा मालूम हो गया, वहां से रिलेशन होगा हमारा तेलंगाना सेंटर से अच्छा रिलेशंस हो गया, इसलिए हम इतना दूर तक आया। आई एम फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी, वेरी पीसफुल हियर, आई एम अवॉइडिंग एवरी स्ट्रेस। अभी फोन भी बंद किया, अच्छा काम हो रहा है इधर, थोड़ा हम एनर्जिक होता होए तो ज्यादा कम काम कर सकते हैं, ये भी मालूम हो गया इधर। सो आई विल कम ऑलवेज, आई विल वर्क विथ ब्रह्म कुमारीज एंड आई विल ब्रिंग उषा दीदी क्या बोला, एक बार लोकल सेंटर विजिट करो आना, आई विल गो देर, एंड एक बार इयरली वंस कम हियर विथ अनेदर, आई विल कम एंड ब्रिंग अनेदर अलॉन्ग विथ अदर्स। I this time also I brought three girls here. One is American girl, one is though is our Telangana state se. Mujhko ye 3 days bahut prashant mila, thoda confusion bhi clear ho gaya. Thoda thoda confusion hai Brahma Kumaris kya karte hai, wo ek hi dharm bolte hai, ek hi god ka trust karo aisa bolte hai. थोड़ा थोड़ा है डिफरेंट ओपिनियन, मगर इधर आपका क्लासेस सुने कर गॉड इज एक, इक्वल करना, ऑल बिलीव इनर फीलिंग, ऐसा सेवा सब थोड़ा क्लियर हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, ओम शांति। कुछ गलती है हो तो माफी करो।
बहुत 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 धन्यवाद, आपने कुछ गलती नहीं की, सबको बहुत बहुत प्रेरणा दी और बहुत सब सेशंस बहुत अच्छी तरह से क्लैरिटी ली। तो उनसे बातों से हम जान सकते हैं कि उन्होंने कितने गहराई से समझा है इस ज्ञान को, एक परमात्मा के घर में जो परमात्मा एक है उनको जानने से जो शक्ति मिलती है, उसके साथ फिर स्वसेवा से कैसे जनसेवा करना है वो बैलेंस रखना उन्होंने जाना और सबको लेके आएंगे। उनके साथ तो अभी ही पहली बार ही उन्होंने 3 कुमारियों को लेके आए हैं और आगे और भी सबको लेके आते रहेंगे, यही आशा रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है सीता जी को। और अभी हम इस संपन्न समारोह के आखिरी सत्ता पर मनाकरी पड़ाव पर आए हैं। इस सत्र में मुख्य वक्ता राजनीतिक सेवा प्रभाग के राष्ट्रीय समन्वयक आदरणीय पीके रंगनाथ भाई जी मैसूर से आए हैं। मैं बड़े आदरपूर्व से साथ आमंत्रित करती हूँ, वे आए और इस सम्मेलन का समापन संबोधन देकर हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय रंगनाथ भाई जी।
ओम शांति। पिछले 3 दिनों से हम बहुत कुछ सुने हैं और थोड़ा थोड़ा अंदर भी गया है, एक्सपीरियंस भी थोड़ा थोड़ा हुआ है। इतने सालों से ब्रह्मा कुमारी आश्रम ने पॉलिटिकल लीडर्स का कॉन्फ्रेंस हर साल यहाँ करते हैं, इसके अलावा स्टेट लेवल में डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी करते हैं। ये क्लैरिटी रहना चाहिए कि ब्रह्मा कुमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते, बिकॉज वी आर अपोलिटिकल। और किसी धर्म का भी हम बायस व्यू नहीं रखते हैं, क्योंकि हमारे लिए सब पॉलिटिकल लीडर्स एक ही है, आत्माएं हैं, और सब धर्म का एक ही गॉड है, वो ज्योति है। तो इसीलिए हमारे अंदर कुछ यहां आकर के बोलते हैं कि ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, लेकिन सब ठीक है। जहां जाना, जहां कुछ होना चाहिए था हो गया, जहां कुछ होना चाहिए वो हो जाएगा, ऐसा हमारा मन है। लेकिन इतना कुछ सीखते हुए भी, मेडिटेशन करते हुए भी, बहुत सारे लोगों को मन में कंसंट्रेशन नहीं रहता है और अंदर में वीकनेस का अनुभव करते हैं। फिजिकल वीकनेस नहीं है, मेंटल वीकनेस है। ये डायरेक्शन दे रहा है कि हमारा संकल्प शक्ति जो है, मनोबल जो है, थॉट पावर जो है, उसका ताकत रिड्यूस हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मन के संकल्पों को कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, सबका शरीर में मन है और मन एक ही काम करता है, सोचना। फिर भी ताकत क्यों कम होता है, ये एक दो मिनट में आपको बताना चाहता हूं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन करके एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज एनर्जी एंड वाइब्रेशन। सारे दुनिया में लोग है, प्राणी है, पक्षी है, नेचर है, धरती है, बॉडीज है, सब एनर्जी है, सब एनर्जी देते हैं। और एनर्जी कैसे ट्रांसफर होता है? वाइब्रेशन से होता है। जैसे कि सूरज से एनर्जी आता है, विंड एनर्जी है, रिवर वाटर एनर्जी है, सब तरीके का एनर्जी एक एक तरह से दूसरे तरीके से एनर्जी वाइब्रेशन के द्वारा चलता है। हम आत्मा भी एनर्जी सेंटर्स है, हमसे भी वाइब्रेशन निकलता है बाहर, क्योंकि हम एनर्जी है। एनर्जी कौन सा है? थॉट एनर्जी है। मन सोचता है, हर संकल्प एक एनर्जी है। इस एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करता है। दो तीन आदमी बैठ करके बात कर रहे हैं तो उसके बीच बिना बात किए एनर्जी का ट्रांजैक्शन हो रहा है। इस ट्रांजैक्शन में कुछ लोगों का जो पुराने संस्कारों का जो बातें हैं फिनिश हो जाता है, किसी किसी का स्टार्ट हो जाता है, मालूम नहीं होता, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि हम क्यों इधर पैदा हुए, कौन भेजा हमको, और इसी घर में मैं क्यों पैदा हुआ, और इसने ही मेरा पति क्यों बना, मेरा पत्नी क्यों बना, मेरा माता पिता इनको ही बनाना क्यों, क्यों कौन, हु इज द चूजर, आई हैव नॉट चूजन, मैंने तो चूज करके ये घर में नहीं आया, क्यों? ये सभी वाइब्रेशन का और एनर्जी का सेटलमेंट हो रहा है, इसीलिए संबंध में आते हैं। ये सभी फिक्स्ड है। हम जो जो कर्म किए हैं उसी अनुसार, उसी एनर्जी के साथ हम जहां जिंदा होना है वहां ही जिंदा होना है, दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। तो ऐसे बोलते हैं तो हम चुन करके वहां आए हैं, बोलते हैं हम चुने नहीं है। हमारे जो एनर्जी लेवल है वो उस घर के लिए हमारा डायरेक्शन दिया है बस। तो हम जितना मन को इधर उधर चलाते हैं, मन चलायमान होता है, संकल्प चलायमान होता है, उतना हमारा एनर्जी डिप्लीशन होता है, एनर्जी कम होता जाता है। जितना हमारा अटेंशन एक ही जगह रखते हैं उतना हमारा एनर्जी बढ़ता है, बिकॉज वेयर एवर अटेंशन गोस एनर्जी ऑल्सो गोस विथ इट। हम इधर उधर देखते हैं तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इधर भी जाता है उधर भी जाता है, वेस्ट जा रहा है। तो जितना हम बॉडी मूवमेंट करते हैं, जितना हम मन का मूवमेंट करते हैं, तो हमारा एनर्जी कम कम होता जाता रहता है। इसीलिए जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो बॉडी को हिलना नहीं है, कर्मेंद्रियों को भी हिलना नहीं है, ऐसा हम बैठना है जैसे हम स्टैच्यू है। तो अंदर क्या होता है, जितना हम स्टैच्यू होकर के स्थिर होकर के बैठते हैं उतना हमारा मन चलायमान कम होता है। इससे क्या होता है, हमारा एनर्जी भरते हैं, कहाँ कहाँ से भरते हैं, ऊपर से भरते हैं, बाय डिफॉल्ट आ जाता है। जितना हमारे मन मौन में जाता है उतना ज्यादा हमारे अंदर एनर्जी ऊपर से आता है, वो एनर्जी सब जगह है, इधर भी है। तो यहाँ कौन कंसंट्रेशन से बैठता है बिना मूवमेंट अचल मन से, तो उसके अंदर ये प्रवेश होता है ऑटोमेटिक। इसलिए हमको जब भी मेडिटेशन में बैठते हैं ऐसा बैठना है जैसे कोई देखे मूर्ति बैठा है, ऐसे हमको बैठना है। दूसरी बात है कि हम चुपके बैठे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, फिर भी हमारा मन जाता है इधर उधर। मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, मेडिटेशन कर भी रहे हैं, फिर भी मन इधर उधर जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि हमारा बुद्धि जाता है। बुद्धि आत्मा का आय है, आंख है, वो आंख है ना, इधर उधर देखने के लिए जाता है। जहां जहां उसका इंटरेस्ट है वहां जाता है, जहां बुद्धि जाता है वहां मन भी जाता है। जो बुद्धि देखता है यहां बैठ करके विजुअलाइज करता है, उसके साथ मन भी अपना संकल्प उस जैसा ही करता है, उससे क्या होता है, मन वीक हो जाता है। इसलिए जब हम बैठते हैं, कहीं भी बैठते हैं, काम करने के लिए बैठते हैं, मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं, सुनने के लिए बैठते हैं, तो ये देखना है मेरा बुद्धि इधर उधर चलायमान नहीं जा रहा है। इससे क्या होता है, हमारा अंदर डिप्लीशन नहीं होता, एनर्जी ज्यादा होता है। और तीसरी बात है कि हम मोबाइल ज्यादा देखते हैं, टीवी ज्यादा देखते हैं, जितना आवश्यकता है उससे ज्यादा न्यूज़पेपर देखते हैं, आवश्यकता से ज्यादा बात करते हैं, चर्चा करते हैं, सारी दुनिया का चर्चा हम करते हैं, उसमें ही हमारा डिप्लीशन होता है एनर्जी का। इसीलिए हम जितना देखना है हमारा स्क्रीन टाइम जितना चाहिए उतना ही रखना है, ये हमारा जीवन में डिसिप्लिन लाना है, नहीं तो एनर्जी 24 आवर्स जाते ही रहता है। और टीवी देखना, अनावश्यक दूसरों से चर्चा करना, जितना कम करते हैं ना उतना हमारे अंदर शक्ति आता जाता है। मन को शक्तिशाली बनने के लिए हमको ये सभी करना है, नहीं तो हम वीक हो जाएंगे। बाहर से बहुत ताकत वाले हैं, अंदर वीक है। जितना वीक है उतना दुख ज्यादा होता है, उतना मूड ऑफ ज्यादा होते हैं, उतना मन में शंका पैदा होता है और ईर्ष्या द्वेष ज्यादा होता है। क्योंकि भावना है ना, भावना दो ही प्रकार का, एक पॉजिटिव भावना, एक नेगेटिव भावना। जिसके पास नेगेटिव भावना है उसका बहुत जल्दी से डिप्लीशन ऑफ एनर्जी होता है। लेकिन हमारा प्यार से, शांति से या ग्रेटिट्यूड से, इस भावना से हम बात करते हैं या सोचते हैं या मेडिटेशन करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा पावर ज्यादा होता है। ये टेस्ट करके आप देखना, जो आइंस्टाइन ने बोला 100% अभी तक वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि सब जगह जो भी है, प्राणी पक्षी जब है वो सब में एनर्जी है, वो एनर्जी वाइब्रेशन से इधर उधर जाता रहता है। हमको चाहिए परमात्मा का एनर्जी। परमात्मा का एनर्जी हमको लेने के लिए हमारा फ्रीक्वेंसी ना है, अंदर का फ्रीक्वेंसी, उसको ट्यून करना है। जैसे कि ऑल इंडिया रेडियो में जो प्रोग्राम होते हैं सुनने के लिए ट्यून करना पड़ता है ना उस फ्रीक्वेंसी में, ऐसे भगवान का फ्रीक्वेंसी जो है वो साइलेंस है। क्योंकि भगवान जहां रहता है वो टोटल साइलेंस का दुनिया है, वहां से जो वाइब्रेशन आता है उसमें टोटल 100% साइलेंस ही रहता है। हम बात कर रहे हैं, हम मन में जितना सोच रहे हैं वो एनर्जी अंदर कहां आ सकता है? नहीं आता है। जितना हम कम बात करते हैं अंदर, जितना हम मौन में रह सकते हैं उतना एनर्जी आते जाता है। ये टेक्निक है मेडिटेशन करने का। तो इसीलिए हम सभी सेवा के लिए हैं, दुनिया के सेवा ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। लेकिन सेवा करने के लिए शक्ति चाहिए, मन का शक्ति चाहिए। मन का शक्ति करने के लिए हमको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने के टाइम में हम देखना है मैं अंदर क्या कर रहा हूं, तो एनर्जी आएगा वाइब्रेशन से, हम भी बहुत बहुत शक्तिशाली बनेंगे। ये संदेश हम सभी यहां से लेके जाएंगे। थैंक यू। ओम शांति।
रंगनाथ भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने पूरे सार स्वरूप ने समझाया कि हम जो है हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए तनाव मुक्त या जो भी चैलेंजेस राजनीति में या कोई भी लाइफ में आता है तो एनर्जी का इकोनॉमी करें, उससे ही हम आगे बढ़ सकते हैं और परमात्मा के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। और अभी इस सत्र के अंतिम चरण पर पहुंचे हैं और अभी हमारे बीच में राजनीतिज्ञ सेवा प्रभाग के अध्यक्ष हमारी श्रद्धेय अभी के लक्ष्मी दीदी जी के से निवेदन करती हूं कि वो अपनी अध्यक्षीय उद्बोधन देकर इस सत्र को अपनी आशीषों की आशीषों से फलीभूत करें। दीदी जी 60 साल से अपनी समर्पित जीवन व्यतीत करते हुए जब वो मैसूर में आए थे तो एक सेंटर था, अभी 150 सेवा केंद्र को खड़ा करके पूरे मैसूर में 10 जिलाओं में अपने सेंटर्स को संभाल रहे हैं और 75 साल पूरा करके वो इतना आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं।
ओम शांति। अभी तक 2.5 घंटा इतना दीर्घ काल आप सभी शांतचित्त होके बहुत सुंदर संपन्न समारोह प्रोग्राम को सफल किया है। आप सबको मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आज के मंच में हमारे आदरणीय श्री सूर्यकांत पलाडे पूर्व विधायक महाराष्ट्र से आए हैं, वीरेंद्र रघुवंशी पूर्व विधायक मध्य प्रदेश से आए हैं, श्री विनायक पाटिल पूर्व विधायक महाराष्ट्र से आए, श्री प्रेम रंजन पटेल पूर्व विधायक बिहार से आए, श्री गंगाराम भाई सौदागर पूर्व विधायक तेलंगाना आंध्र से आए, श्रीमती सरिता नारायण पूर्व विधायक रोहतक रोहत के आए हैं, और श्री राजेंद्र गौलत पूर्व संसद राज्यसभा जोधपुर से आए हैं, श्रीमत दंसारी अंसिया बेन पंचायती राज ग्राम विकास की मंत्री तेलंगाना से आए हैं। तो इन सब ने बहुत बड़े प्रेम से अपने 3 दिन का अनुभव को जीवन में कैसे अनुभव किया उसको अपना अनुभव के आधार से आज के टॉपिक जो राजनीतिक में नैतिक आधार सत्ता पद के ऊपर सेवा करना इसके बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छा अनुभव सुनाया। क्योंकि राजनेताओं ने यह समझा है हम ऊपर जाने के लिए सत्ता पद अधिकार को प्राप्त करना, धन दौलत को प्राप्त करना, तभी हम ऊपर जाएंगे। ये समझ करके उन्होंने जो भी अपना सेवा क्षेत्र में देश की सेवा में जो वायदा किया, हम देश की सेवा करेंगे, सेवादारी बनेंगे, लेकिन काल के अनुसार उन्होंने सोचा, पहले भी हमारा देश में बहुत बड़े बड़े देश के मुकुंड जो आज सुबह में हमारी आदरणीय आशा बहन ने बताई, आप सभी ने सुना है, बड़े बड़े नेता लोग कैसे हमारा देश को संरक्षण किया, लेकिन आज के नेता ये सोचते हैं हमारे काल के अनुसार हमको चलना होगा। अगर हम धन दौलत नहीं अधिकार को प्राप्त नहीं करेंगे, धन को नहीं कमाएंगे, तो हमारा जीवन कैसे होगा, हमको कोई वैल्यू नहीं है। आज ये सोचते हैं हमारे पास धन नहीं है तो राजकारण नहीं चला सकते हैं, तो इसमें पैसा या धन बहुत जरूरी है। इसके लिए जो उन्होंने वायदा किया देश सेवा करने का, उसका विरुद्ध चलना पड़ा। आज बहुत धन दौलत के पीछे जा रहे हैं, उसको अपना जीवन का आधार बना दिया है, तो उसके लिए उन्होंने जो मूल अपना नैतिक जीवन है उसके विरुद्ध चल रहे हैं। तो इसलिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो पॉलिटिकल सर्विस विंग के 3 दिन का ये जो प्रोग्राम हर साल चलाते हैं, ये सेवा इसलिए चलाते हैं कि अपना जीवन को परिवर्तन करके जाए, क्योंकि भारत देश जो प्राचीन देश है, आदि सनातन देवी देवता धर्म का दैवी राज्य था, ऐसे दैवी राज्य को पुनर्स्थापन करना या भारत को विश्व गुरु बनाना, उसके लिए ऐसा श्रेष्ठ जीवन बनाना जरूरी है। अपनी नैतिकता को अपनाना पड़ेगा, अपना जो लालची बढ़ गया है उसको त्यागना पड़ेगा, और अपना उससे ये डरने की बात नहीं है। हमारे पास हम सच्चे दिल से या नम्रता से चलते हैं तो समाज में कोई वैल्यू नहीं रहेगा। देर होगा वैल्यू को समझने के लिए, देर होगा, लेकिन धारणा से सच्चे वैल्यू को अपने जीवन में अपनाने से आपका जीवन मार्गदर्शन बन जाएगा, एग्जाम्पल बन जाएगा। ये हमारे सभी भाई बहनों ने, जैसे गंगाराम भाई और अंशिया बहन जी, हमारे सभी भाई बहनों ने जो भी अनुभव सुनाया, तो उनका जीवन कैसे आज परिवर्तन हुआ, आदर्श बना, सभी लोग आपको, सभी आपको समाज में साथ दे रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए सेवा में सहयोग दे रहे हैं। तो इसलिए मैं आप सबको मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय नेतागण को मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग 3 आना तो दे दिया, मैं अभी 5 आना चाहती हूँ। वो है 5 आना 1 देना। 5 आना माना क्या है, कौन सा है 5 आना? 5 विकार, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार देना और एक घंटा आना। भगवान ने 24 घंटा दिया है तो उसमें हमारा जीवन सफल करने के लिए एक घंटा हमारे लिए हर रोज फिक्स करना। भले आपको ईश्वरीय विश्वविद्यालय के क्लास में आपकी जहां भी जगह है, सारे देश विश्व में 147 देशों में ब्रांचेस है हमारा, सब जगह कोई भेदभाव नहीं है, कोई रंग भेद भी नहीं है, भाषा भेद भी नहीं है और धर्म भेद भी नहीं है, कोई अधिकार का भेद भी नहीं है, सबकी समानता की ज्ञान परमात्मा जो ज्ञानेश्वर है, सर्वज्ञ है, परमात्मा का ज्ञान हमें इधर सुनने में हम सबको हमारा जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें ज्ञान मिल रहा है। तो इसलिए आप सबको आकर के 3 दिन जो ज्ञानोद्योग शिविर में आप लोगों ने सुना है उसको और विस्तार से क्वेश्चन आंसर से, आपका और भी बहुत क्वेश्चन आता है, 7 दिन के कोर्स में एक सेल्फ रियलाइजेशन भी है, एक गॉड रियलाइजेशन भी है, एक कर्मा थियरी भी है, अच्छा कर्म कौन सा, बुरा कर्म कौन सा, श्रेष्ठ कर्म कौन सा, इसका सारा रहस्य सुनने में आपको मिलेगा। अच्छे अच्छे गुणों को, सद्गुणों को कैसे धारण करना, जो मनुष्य धर्म माना ही धारणा है, सद्गुणों को जीवन में अपनाता उनका जीवन जरूर आदर्श बनेगा। तो आप सभी को मैं यही निवेदन करती हूँ, सद्गुणों की धारणा से आप इस ज्ञान सरोवर में आए हैं, 3 दिन ज्ञान सरोवर में ज्ञान स्नान पाल ज्ञान में डुबकी लगाया है, ज्ञान स्नान किया है। हम लोग सुने थे मानव सरोवर में जो जाते हैं उधर डुबकी लगाने से परिया बन जाते हैं। तो आप सभी क्या बने हैं, है? ज्ञान सरोवर में आके ज्ञान में डुबकी लगा के 3 दिन लगातार सुबह से शाम तक ज्ञान सुन के ज्ञान स्नान करके क्या बने हैं? आप सबको अभी परी माना देवता बनना है, मनुष्य से देवता बनना, ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने का, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का। ऐसा श्रेष्ठ जीवन आप सभी अपनाएंगे, आपका जीवन आदर्श बनाएंगे, इस दुनिया को दैवी राज्य बनाएंगे, भगवान के इस पवित्र कार्य में आपका योगदान रहेगा, सहयोग रहेगा और आपका ही अकेले जीवन नहीं है। जैसे सभी ने बोला हम 3 आने के बारे में, दूसरों को भी ले आना, लेकिन पहले अपने घर वालों को, चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने घर वालों को सुधारना, घर वालों को परिवर्तन करना, घर में सबको सुख शांति रहे, समाधान रहे, आपस में प्यार रहे, तो जरूर घर मंदिर बनेगा। फिर समाज में आपको सब एक दो को आप सहयोगी बनेंगे और देश विश्व में भी ये शांति स्थापन करने की श्रेष्ठ कार्य में आप सबका योगदान रहेगा। तो मैं आशा रखती हूँ आप सभी जरूर आएंगे, सबका संस्था लोकल जहाँ से भी आए वहाँ जाएंगे, आपका जीवन को आदर्श बना के अनेकों का कल्याण करने के लिए निमित्त बनेंगे, ये आशा रखते आप सबको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ, वंदना करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ। ओम शांति।
आदरणीय लक्ष्मी दीदी की का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करते हैं, जिनकी छत्रछाया में ये सम्मेलन, इस राजनीतिज्ञों का सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ है। मैं यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों, वक्ताओं और आयोजन को सफल बनाने वाले सभी को मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। सारे टीम जो उषा दीदी के और सपना दीदी के आशा दीदी के सब का टीम सब मिलके पूरा आयोजन किया और इस सम्मेलन को सफल करने में सबका योगदान बहुत है। आप सभी का जीवन मूल्यनिष्ठ और सेवा भाव बना रहे, इसी मंगल कामना के साथ इस समापन सत्र की यही विदाई होती है। ये विदाई नहीं, आप सबके लिए बधाई है और आगे एक न्यू बिगिनिंग के लिए, नया जर्नी के लिए, आपका शुरुआत के लिए आप सभी को बधाई है। अच्छा, ओम शांति। 2 मिनट अभी परमात्मा को याद करते हैं और हमारे बीच में आदरणीय गहलोत भाई जी को मैं बहनों से निवेदन करती हूँ कि वो सौगात दें और सम्मान करें। लक्ष्मी दीदी से मैं निवेदन करती हूँ कि भाई जी को सौगात देकर सम्मान करें।